देखो कोई भी ज्ञान कब अस्वस्थ हो जाता है, तो कहते हैं ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल, राग रहित अनुकूल है और राग सहित प्रतिकूल। अगर वो ज्ञान जो है हमारे मोक्ष में भी कारण बन सकता, कब? जबकि वो ज्ञान राग से रहित हो। वीतराग विज्ञान, उस विज्ञान में क्या जुड़ गया? वीतरागता जुड़ गई, तो वो वीतराग विज्ञान हमारे अपने उपकार करने में सहयोगी होगा, स्वस्थ बनाने में सहयोगी। और अकेला विज्ञान हो जिससे कि हम भौतिक सुख सुविधा की सामग्री जुटाते हैं, आज के समय में तो विज्ञान के मायने यही है कि भौतिक सुख सुविधा की जितनी बने उतनी सामग्री जुटा लो, नए नए आविष्कार कर लो, पांच इंद्रिय के विषयों के में आशक्त और हो रहा है व्यक्ति। पहले तो जो है सीधी साधी कोई चीज मिल जाती थी, ले ली, अपने काम की है इसलिए ले ली, और अब तो बिना काम की चीज भी चूंकि बहुत अच्छे से सजावट करके रखी है तो मन नालायक हो गया, अरे ले लो है? लेने गए थे कुछ और लेके आ गए कुछ और। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो उन्होंने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है सामग्री को कि वो हमारे मन को प्रभावित कर देती है। ये विज्ञान ने क्या किया, हमें पांच इंद्री और मन के विषयों को ही की लोलुपता बढ़ा दी, जबकि होना ये चाहिए था कि पांच इंद्री और मन की लोलुपता कमती हो गए तो वो वीतराग विज्ञान कहलावे, वो ही हमारे जीवन को हितकारी है, इसलिए वो ही स्वस्थ है। तो आचार्य महाराज ने ठीक कहा कि जब स्वस्थ ज्ञान होता है तो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, फिर अपने आप में लीन हो जाता है, और अगर बाहर भटकता है तो वो सब अस्वस्थ है। वो सारा ज्ञान आर ध्यान रोध ध्यान खोपन क्या वास्तविक ध्यान कहेंगे है? तो नहीं कहेंगे। आर ध्यान रोध ध्यान के अलावा संसार में क्या होता है? कहते इसलिए आर ध्यान रोध ध्यान से जो बचावे वही ज्ञान वास्तव में धर्म ध्यान की तरफ ले जाएगा। इस अपेक्षा से ये कथन कहा होगा, हित से जो मुक्त है वो है सहित, और सहित का भाव ही साहित है, ये मूक माटी में लिखा हुआ है आचार्य महाराज ने है? हित से जो युक्त है वो सहित, हितेन सहिता सहिता है, और सहित का भाव ही साहित्य है। आचार्य श्री ने साहित्य की परिभाषा बनाई कि साहित्य वही है पढ़ना चाहिए जिससे कि आत्मा का कल्याण हो, हित हो, नहीं तो दुनिया भर में बहुत सी चीजें साहित्य के नाम पर बिकती हैं जिसमें से 95% तो हमारे मन और मस्तिष्क को गंदा करने वाली चीजें हैं। और वास्तव थोड़ा सा ज्ञान ऐसा है, थोड़ा सा साहित्य ऐसा है जिससे हमारा जीवन उज्जवल होता है, पवित्र होता है, जिससे कि हम अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। इसलिए वास्तव में साहित्य कौन सा कहलाएगा? साहित्य वो कहलाएगा जिससे कि हमारे अंदर अच्छे विचार आवे और हम अपना कल्याण कर सकें। महाराज जी हमारे दो मित्र हैं जो जैन हैं, पर वह मानते हैं कि अन्य धर्म की जो देवी देवता हैं उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखना चाहिए, वो रखते भी हैं। अब उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है भाई, आपके मित्र हैं और वो जो है जैन कुल में पैदा हुए हैं, ये ठीक बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, तो देवी देवता में कैसा विश्वास रखते ये विचार करो। देवी देवता तो जैन धर्म में भी बताए गए हैं कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं और देवी चारों गतियों में से एक गति के जीव हैं, जैसे हम संसारी जीव हैं वैसे ही वे संसारी जीव हैं देवी देवता इत्यादि। तो देवी देवता इत्यादि को वीतरागी भगवान मान करके प्रणाम करना अपने आप गलत ही हो गया, वो तो देवी देवता हैं। सो जैसे अपन अपने साधर्मी को और नमस्कार इत्यादि करते हैं, वैसे अगर कोई सा अपन को देवी देवता अच्छा और कोई को मिलो हो ऐसा तो हमने देखा नहीं, मिलो हो तो आप बताइए कोई को रास्ता मिल गया हो कि हम फलाने देव हैं और वो से आए सब धर्म स्वर्ग से आए हैं या कि ज्योतिषवाती से आए, ऐसा तो कोई मिलता नहीं। अपन ने जो है अपने मन ग्रंथ और उनके रूप बना लिए हैं, 10 हाथ लगाने थे 10 लगा ले, 50 लगाने थे 50 लगा ले, चाहे जितने लगा लो चाहे जैसा रूप बता दो बना दो, पर वास्तव में देखा जाए तो वे जो रूप बनाते हम देवी देवता का वो सब कैसे हैं? वो तो सिर्फ चारों गतियों में से एक देव गति के जीव हैं और वे अभी वीतरागी नहीं है, वे स्वयं भी अभी संसार का अनुभव कर रहे हैं, राग द्वेष से युक्त कर रहे हैं। तो हमारा भगवान कौन है जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वो हमारा भगवान है। उसके अलावा हम बाकी को भगवान कैसे मान लेंगे? चाहे हमारे और तुम्हारे को ते में कछु है नहीं है, कभी उनके भगवान जी हमारे भगवान जी हमारे तुम्हारे का नहीं, जो वीतरागी सो हमारे, बस वास्तव में तो जो यही है कि जो वितरागी हैं वे भगवान हैं। अब जो जैनियों के भगवान है और जो हिंदुओं के भगवान है और जो मुसलमानों के भगवान, तो ऐसे कछु भगवान तो अलग अलग है नहीं। भगवान तो वही, वास्तव में भगवान तो वो है जो कि वितरागी है, और वितरागी नहीं है तो काय के भगवान, चाहे तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, वे भगवान ही नहीं कहेंगे, वे तो आपने अपनी मर्जी से और मान लिया है उनके लिए। इसलिए उनको ऐसा समझाना चाहिए अपने मित्र को कि देखो भाई आप ये बताओ कि आप भगवान किसको मानते हो, हैं? ये पूछना चाहिए। तो जो वितरागी है उसको भगवान मानेंगे, उसको ही पूज्य मानेंगे, तो फिर आप जो है जो राग द्वेष से अभी युक्त हैं, संसार की अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, उनको क्यों आप भगवान की तरह सम्मान दे रहे हैं? उनको जैसे हम तो सामान्य रूप से कहते हैं कि देखो मित्र के पिता भी हों तब भी अपन उनको क्या कहेंगे, मित्र के पिता हैं मेरे पिता। देखो जब लोक व्यवहार तक में जो है और हम इस तरह करते हैं तब इसी तरह तो ये है कि भैया ये वितरागी भगवान नहीं है। ठीक है आप उनको भले कोई अज्ञानी है और वो अगर वितरागी के लाभ विरागी द्वेषी को भगवान मानता है तो मानो भाई, हम उसका कोई विरोध नहीं करेंगे लेकिन हम समर्थन भी नहीं करेंगे। हम क्यों समर्थन करने जाएंगे, हम वितरागी का ही समर्थन करेंगे। अब ये इनका प्रश्न ये है कि कैसे विश्वास दिलाएं कि ये सब ठीक नहीं है। तो भैया आज के संसार में कोई हो अपन जो विश्वास दिला नहीं सकते, अगर ऐसा विश्वास दिला सकते तो सबको सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है। बड़ा दुर्लभ है जब जीव का जो है काल पकता है, जब उसका अवसर आता है, या कह लीजिए जब वो जीव पुरुषार्थ करता है समय का लाभ उठा करके, अवसर का लाभ उठा कर, तब उसको दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होती है, तब उसको ये आभासित होता है कि अरे ये जो मैं अभी तक मानता था वो तो मेरी भूल थी। अब कोई को अपनी भूल बताओ तो ऐसी मान ले भैया तो फिर तो वो सरल परिणामी कहलाएगा, और छोड़ दे तो बहुत, नहीं तो अगर कठिन है गांठ उसकी, उसमें लिखा जाने जय चिंतित जय जीव जरा मरण भय दुखई विश्वेशु न विरज जय अहो सुबद्धो माया गंठी हो। अरे ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि इस असार संसार में सिवाय जन्म मरण के दुख के और मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन इसके बाद भी इस संसार से विरक्त नहीं होता। अरे ये मिथ्यात्व की मोह की ग्रंथि बड़ी दृढ़ है, अहो इदम आश्चर्यम। ऐसा कहते आचार्य भगवंत के बड़ा आश्चर्य है इसमें, हम क्या कहें इसमें, किससे कहने जाएं कि आप अपना ये मिथ्या भाव छोड़ दो। कहते नहीं हम तो बता भर सकते हैं, जबकि जीव स्वयं भी जानता है विचार भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हो, सब कुछ जान करके भी संसार से विरक्त नहीं होता है, तो समझना कि अभी उसके अज्ञान प्रबल है। और दूसरे के अज्ञान में तो दया ही आना चाहिए, उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए कि अरे देखो अज्ञानी है जानता नहीं है, है? दया करना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपना मित्र अगर उल्टे रास्ते पे जा रहा है तो गुस्सा नहीं करो उसको, क्या करो, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर शोभ नहीं, कोई क्षोभ नहीं है, दुर्जन है क्रूर है कुमार ग्रत हैं तब भी क्षोभ नहीं आए, बस यही भावना आवे कि कब इनको सद्बुद्धि मिले और ये भी अच्छे मार्ग पर लग जावे, ऐसा विचार अपन को करना चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्या सागर, जन्मते ही मुक्ति नहीं पाते किंतु जन्म से ही मुक्ति पा लेते हैं। आचार्य श्री इस तरह से बहुत शब्दों का भी और वाक्यों का भी अनुप्रास मिलाते हैं, उसमें बहुत दक्ष हैं आचार्य महाराज, शब्दों के विभिन्न अर्थ निकालना और वाक्य जो है इस तरह के कि अनुप्रास जैसे। अब देखो इसमें भगवान जन्मते ही मुक्ति नहीं पाते किंतु जन्म से ही मुक्ति पा लेते हैं, अर्थात अब उनका जन्म मरण नहीं होगा, पर कोई भगवान बनकर के तो जन्म लेता नहीं, अपने हाथ तो जो है बालक के समान जैसे अपन जन्म लेते ऐसे भगवान जन्मेंगे, फिर जो है तपस्या करके और वे भगवान बनेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, सिद्ध पने को प्राप्त करेंगे। इस वाक्य का यही अर्थ है कि भैया कोई भी जो है पतित से पतित आत्मा भी और अगर चाहे तो अपना उत्थान कर सकती है, ये जैन धर्म का विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहना चाहिए एक क्या कहें उसका दर्शन है, ये फिलॉसफी है जैन फिलॉसफी कि हर आदमी जो है अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से कोई महान नहीं होता। हाँ कुछ लोग हैं जो जन्म से भी महान होते हैं, तीर्थंकर हैं जन्म से ही महान होते हैं, उनका गर्भ में आना भी और उनका जन्म लेना भी जो है वो कल्याण का कारण हो जाता है, क्योंकि अब उनका ये आखिरी गर्भ है और आखिरी जन्म है इस, और सब जीव उससे प्रेरणा लेते, मिट्टी कुंभकार के जुम्मे अपने को सौंप दे फिर वो कुंभकार जो है उसके साथ क्या क्या नहीं करता, पानी मिला करके पैरों से कुचलता है, तो घबरा जाती कि अरे हमको तो कह रहे थे कि बड़े बनेंगे, ये तो और ज्यादा उपद्रव खड़ा हो गया। और फिर बाद में मिट्टी पर मिट्टी का वो बना करके और जब चाक पे चलाता है तो बहुत व्यथित होती है वो, मूक माटी में लिखा आचर्षि ने उसमें डाल दिया, पर उसको विश्वास है कि बड़े तो ऐसे ही बनेंगे। तो फिर उसको जब अबा में पकाया जाता है तब चारों तरफ से बिल्कुल गर्मी गर्मी, तो वो महसूस करती कि अब तो मरे, अब तो बचना संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद जब पक करके बाहर आती है तब सेठ लोग भी जो है अपने हाथों हाथ उसको कलश बन जाती, फिर वो सब हाथों हाथ ले लेते हैं। तो क्या हुआ, ये विकास हुआ मिट्टी का कहां से, जबकि वो बिल्कुल पतित थी और इतना उत्थान करके और सबके सिर पर शोभा दे रही। लोग कलश को सिर पर रख करके ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, मंगल कलश मानते हैं, वही तो मिट्टी का ही तो है वो। इस तरह ऐसे ही जो है आचार्य हंसवाने के लिए, और मालूम क्या बोलते कि बड़ा बड़ा तभी बनता है जब अग्नि परीक्षा देता है, है? दही बड़ा, दही बड़ा बड़ा कब कहलाएगा वो, वो तो दाल था वो, तो दाल को फिर पीसा, फिर उसमें कहते नमक मिर्ची मिला दी, तो और उसको अरे नमक मिर्ची मिला रहे हैं उसमें, और फिर उसको बिल्कुल कढ़ाई में डाल दिया तब जाकर के बड़ा बना वो, ऐसे थोड़ी बड़ा बना। तो इस तरह जो है उपसर्ग परिचय सहन करके और पुरुषार्थ करके कोई भी जीव चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि भाई हम जन्म से ही जब बड़े होंगे तब हम बड़े बन पाएंगे, नहीं, पतित से पतित आत्मा चांडाल भी जो है अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो हमारे यहां पर देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामनो, देवता भी उसे प्रणाम करते हैं जिसके मन में धर्म, धर्म के मायने क्या है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके हृदय में है, वो किसी भी जगह क्यों ना जन्म ले लेकिन वो ऊंचा उठ सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं ले लेना कि कोई जो है बिल्कुल माने पतित घोड़ा है हाथी है और दूसरे तिर्यंच हैं, अब उनको आप कहो कि वो बन जाए भगवान तो भैया उसी भाव से नहीं बनेंगे, इतना जरूर है क्षुद्र जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, एक इंद्री दो इंद्री, अभी उनको इतना नहीं कर पाएंगे वो पुरुषार्थ करें तो पहले उनको मनुष्य तो बनना पड़ेगा, और वो भी भोग भूमि का मनुष्य नहीं कर्म भूमि के मनुष्य को ही अपने आत्म कल्याण के लिए इतनी बातें भी आवश्यक हैं, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करे। तो निद्रा 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 प्रचला 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 ज्ञान ग्रद्धि में अंतर स्पष्ट करने की कृपा करें। अरे भैया ये जो है पांच जो है निद्राएं हैं विभिन्न प्रकार की, श्रम और खेद को दूर करने के लिए जो अल्पकाल के लिए विश्राम किया जाता है उसे निद्रा कहते हैं। क्या अर्थ हुआ, श्रम परिश्रम हुआ और थोड़ा सा खेद उत्पन्न होता है, थक गए हैं, उसको दूर करने के लिए जो अल्पकाल के लिए विश्राम किया जाता वो कहलाएगी निद्रा। और बैठे बैठे और हल्के थोड़ी देर के लिए झपकी आ जाना ये कहलाएगी प्रचला। दो चीजें स्पष्ट हो गई, विश्राम किया है अल्पकाल के लिए वो निद्रा हो गई, और बैठे बैठे जो झपकी आ गई वो सारा शरीर कैसा होने लगता, हिलने लगता, प्रचलित मतलब चलायमान हो गया, यहां गर्दन हो गई वहां हो गई सामने, बैठे बैठे ऊंघने लगे, ट्रेन में बैठे बैठे बस में बैठे बैठे, है ना, तो वो कहलाती प्रचला। और अब देखो निद्रा में भी निद्रा निद्रा मतलब बड़ी निद्रा, जगाने पर पुनः पुनः सो जाना, जाग भी गए और फिर पुनः सो गए वहीं के वहीं, और आंखों में ऐसे जैसे किसी ने मिर्च इत्यादि डाल दी हो, आंखें ठीक से खुलती नहीं है, ये हो गई निद्रा निद्रा, बड़ी निद्रा हो गई। और बैठे बैठे जो सो गए थे उसमें भी जो है पुनः जाग करके ऐसा सोचता है कि जैसे मैं तो जाग रहा हूं, और पुनः सो जाता, पुनः जाग करके देख लेता फिर सो जाता, ये क्या कहलाती, ये कहलाती प्रचला प्रचला, डीप स्लीपिंग कहलाती है। और फिर स्त्यान ग्रद्धि, स्त्यान ग्रद्धि तो बड़ी सबसे बड़ी निद्रा है, उसमें क्या होता है कि निद्रा में विशेष प्रकार की सामर्थ्य जागृत हो जाती सोते सोते, और सो बीच में उठ करके चला जाएगा, सोमनेबुलिज्म कहलाता आज की भाषा में इंग्लिश में, तो नींद में चलने की आदत जिसको आज की भाषा में अपन बोलते हैं, तो नींद में और उठ करके और बड़े बड़े काम करके पूरी नदी तैर करके वापस आ गए, और ज्यों के त्यों सो गए, सुबह उठे तो कपड़े गीले गीले पर ख्याल नहीं है कि कहां से आ गए कहां गए थे। हां दरवाजा खोल करके जाएंगे बाकायदे और सब हो करके वापस आ जाएंगे ऐसे, इसलिए उसमें लिखा कि जिसको बड़ी निद्रा आती हो उसको दीक्षा नहीं मिलती है। यह ध्यान रखना, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, ये तीन बड़ी निद्राओं की जिसको उदीर्णा होती है उसको दीक्षा के योग नहीं माना, परीक्षा कर लेते हैं। हमको बाद में ये चीज मालूम पड़ी कि क्यों आचार्य जो है पास में सुलाया 2 वर्ष तक, हाँ 8 महीने के अंदर जो है एलक बना दिया, पास में सोते थे, इधर उधर नहीं, इधर सो ठीक है, यहां सोएंगे, देखेंगे वो कैसे कब उठते हैं, कितने करवट लेना पड़ती है इनको कितने बार, और फिर सामायिक कैसे करते हैं वो देख, बड़ी निद्रा तो नहीं आएगी। नहीं तो एक महाराज जी थे, उनको एक बार बहुत, फिर हमेशा नहीं हुआ, एक बार ऐसा हो गया था निद्रा में वो उठ गए और उनको ध्यान नहीं, उनने जो है छत पर सोए थे तो एक पैर उनका उस तरफ चला गया था, एक तो यहीं था पाटे पर और एक रखने के लिए उधर रख दिया उन्होंने, नीचे तो 3 फिट माने 3 मंजिल ऊपर सो रहे उसमें, तो बाजू में जो महाराज जी थे वो तो ध्यान में थे, उन्होंने देख लिया कि ये तो उधर, तो उनको पकड़ लिया, फिर तो जाग गए वो पकड़ने से। पर ये जो है फिर उनको बहुत सारी चीजें छोड़ दो कि भाई जिन चीजों से उदीर्णा होती उसमें लिखा है निद्रा कर्म की उदीर्णा कैसे होती, ये दिया है उसमें, कहते कि जो भैंस का दूध पिएगा, भैंस की छाछ और दही खाएगा उसके लिए बहुत निद्रा कर्म की उदीर्णा होगी, जो गरिष्ठ भोजन करेगा उसके लिए निद्रा की उदीर्णा होगी, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया तो निद्रा की उदीर्णा होगी, इस तरह जो है बहुत सारे उसमें, और बहुत सुख सुविधा, अच्छा जो है बढ़िया से नीचे बिछाने का नरम नरम कर लिया अगर तो निद्रा ज्यादा आएगी, और ऐसा कठोर वाला हो तो जरा मुश्किल होगी, ये कई पलटा खाएंगे तो फिर गलेगा इधर तो गलेगा, तो फिर तो देर तो बिल्कुल 48 मिनट मुश्किल, मैंने देखा कि 1 घंटे के बाद जो है वो जरूर से नींद खुल जाती है, क्योंकि आप को वो इधर इधर हड्डी में इधर इसमें ये सब जॉइंट्स में
गिरने वो
प्रचला कहलाएगी, प्रचला वो अच्छी मानी जाएगी, निद्रा और प्रचला दो अच्छी मानी गई। हाँ ये जो है मुनि महाराज जी के लिए भी है निद्रा और प्रचला, बाकी तीन नहीं होना चाहिए। हाँ बैठे बैठे आपने ले लिया कोई बात नहीं, 10 मिनट में आप फ्रेश, उनका विनोबा जी के बारे में आता है कि वो कहते थे कि बस 5 मिनट में आता हूं अब भी सो करके, तो लोग कहते 5 मिनट में सो करके आते, वो सचमुच में जाते और लेटे और खर्राटे आना शुरू हो गए, हाँ 1-30 सेकंड के अंदर, और ठीक 5 मिनट के बाद आंख खोल के बढ़िया, ना उनको मुंह धोने की आवश्यकता, ऐसे फ्रेश उठे और चलो काम करो। निद्रा से हमने कहा ना कि परिभाषा कैसी बनाई आचार्यों ने, श्रम और खेद को दूर करने के लिए जो अल्पकाल विश्राम किया जाता वो निद्रा है, अब ध्यान करते करते शरीर तो थक ही जाता है बैठे बैठे, तो अल्प निद्रा हल्की सी तो जो है तंद्रा आ गई।
महाराज एक प्रश्न कोई हम पूछे नहीं, 1 घंटा को या 1.5 घंटा को नियम लेकर बैठे,
ठीक है
बैठ गए, अब अगर कहूँ 10 मिनट खुआ वो समय
बहुत नो, वो पहले से तय करके रखा था अपन तो अपनो 15 मिनट कि जब 15 मिनट तो फोकट है बे तो आए बिना रहने, जब पक्की है कितने बड़े मुनि महाराज जी बन जाओ सामायिक आप, हाँ सामायिक आपने सामायिक में बैठे, और दोपहर वाले में तो ज्यादा आहार का प्रमाद बहुत रहता, हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं इसलिए इतने जागृत हैं, और अगर ये सब बाहर हो जाए और उसके बाद हम जरा सा किताब खींच के बैठ जाए, किताब पढ़ते पढ़ते ही हल्का सा तंद्रा आ जाएगी, क्योंकि भीतर भोजन गया है उसका प्रमाद है, उसका प्रमाद आएगा तो 10 मिनट के लिए तो गाफिल, मैंने गाफिल क्या कहें उसको, जैसे कि जैसे ऐसा लगता है, ऐसा है जैसे कि हम माला फिर रहे हैं, देखना मजा ये है, हम खुद भी बता रहे हैं ना कि हम अनुभव है कि ऐसा लगता है कि जैसे माला फिर रहे, लेकिन माला हाथ में रुक गई, कब रुक गई पता नहीं लगा, और नींद फिर उसके बाद फिर शुरू हो गई माला। हाँ इतना ये अब शरीर का धर्म है, छिंकी देनवा जम्भाई देनवा सुमे ही अंग चला चले ही दिट्ठी चला चले ये दे असमाही पत्ते ही जावर अंतानम भय बंतानम नमोकारम पज्जुवासम करेमी ताव कायम पाव कमम दुच्चरियम वोसरामी, काय के लिए ऐसा कहते हैं बाद में कि अगर जो है सूक्ष्म रूप से मुझे नहीं है याद, और अगर जम्भाई आई हो छींक आ गई हो या मैंने निद्रा के वशीभूत हो गया हूं, सूक्ष्म रूप से मेरे अंग चलायमान हो गए हों, मुझे ध्यान नहीं है, ये सब असमाही पत्ते ही, ये सब समाधि को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, अगर प्रमाद वैसा हुआ तो भगवान तस्त मिक्षा में दुखनम, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। प्रतिक्रमण काइकली करते हैं, इसी के लिए प्रतिक्रमण। तो ये जो निद्रा और पचला है उसमें आचार्य जी तो कहते हैं कि आप अपना अगर मान लो आपको सामायिक के समय निद्रा आ गई तो आप वो उतना कट कर दो और 15 मिनट ज्यादा करो। आप बैठते ही साथ आप देख लो, आप कोई भी होगा बैठते ही साथ 10 मिनट तो एक माला बढ़िया और दूसरी माला में फिर बस, फिर 10 मिनट के बाद फिर आंख खुलेगी तो दिख जाती कि हाँ 10-15 मिनट फिर उसका फिर से अच्छे फ्रेश होकर फिर बैठ जाओ
महाराज।
इन्होंने होने बताओ सब बातें नहीं तुझी और फिर बाद में ये सुन रहे मनो भाई
हम भी सुन रहे हैं। 11:30 में बैठ गए
अच्छा,
और अगर हमारी 12 बजे के लगभग हमारी घीम आई तो हम फिर का नियम जीतते
फिर से। हाँ जैसे प्रतिक्रमण ठीक है वो भी ठीक, लेकिन नहीं लेकिन उसमें उत्ते का उत्ते भर मिनट कम कर दो बस, जितनी देर अपन को लगी कि 15 मिनट ऐसे हो गए। अब सुबह की सामायिक में तो महाराज यहाँ तक हो जाता प्रतिक्रमण करके उतना कम, पर सुबह सुबह उठे अब जल्दी नींद खुल गई, आज 2:30 बजे नींद खुल गई थी, अब 2:30 बजे खुल गई, अब प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया उसके बाद फिर जरा सी निद्रा आ गई तो फिर से प्रतिक्रमण तो फिर से करना पड़ेगा, फिर से सामायिक करना पड़ेगा। हाँ
यदि अपन सो गए हैं तो नींद लग गई और वहां अगर सांस बच रहा है और सुन रहे तो क्या होगा?
इसका मतलब है कि शरीर भर सोया हुआ है हल्की सी और आवाज तो पर बुद्धि में नहीं चढ़ेगी कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो लगेगा आवाज भर आएगी कि हाँ, पर ये समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ये 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 जो है हल्की निद्रा है, ये प्रचला कहलाती
है।
हाँ ये है उसमें उसमें लिखा थोड़ा
सा
अच्छा,
हमने अपना काम किया
और फिर विश्राम कर दिया
तो करीब 15 मिनट नींद आ गई। हाँ बच रहा है सुना।
हाँ ऐसा लगेगा कि वो प्रचला है, वो प्रचला का उदय है। इसमें तो ये लिखा निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, इनमें तो इतनी तीव्र होती है ये निद्रा कि उसमें लिखा कि वृक्ष की फुनगी पर बैठा हो तो भी उसको नींद लग जाएगी। बताइए इतनी डीप स्लीप होती है तो वो उदय नहीं होना चाहिए अपने को, बस ये है अल्प जो है शरीर का को विश्राम देने के लिए तो आवश्यक है। और कहते हैं कि निद्रा पर जितनी हो सके विजय प्राप्त करना चाहिए, अल्प निद्रा से ही काम चल जाए, 3-4 घंटे में काम चल जाए, 5 घंटे में कई बार जो अधिक थकान होगी, 20 किलोमीटर चल के गए हैं तो भैया ऐसे नहीं है कि अब। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि एक दिना कर लो खींच तान के, दूसरे दिना तो डले रहो, इसलिए 28 मूलगुण का पालन खींच तान के करने का नहीं है, शांत भाव से करो कि ठीक है अगर हमने आज 5 घंटे और 6 घंटे में निद्रा से काम हुआ है तो वो हम बाकी जो है कवर करेंगे कर्मों की निद्रा के लिए, और कोई उपाय करेंगे, रस का परित्याग कर देंगे, पर शरीर का धर्म तो है, अगर शरीर को ज्यादा खींच देंगे तो भी टूट जाएगा, टूट जाएगा एक दिन। अबे बैठ जाए दिन भर धूप में, बैठ जाओ एक दिन, ध्याने फिर इतने परे रही हो और फिर भी हवा कर रही। अब भाई देखो वज्रषभ नारा सहनन तो है नहीं, तो वज्रषभ नारा सहनन नहीं है तो जितना इस अरे सड़े शरीर से जितो धर्म ध्यान हो सके सो कर लो, सीधी बात तो ये है। ऐसा शरीर मिला है कि 48 मिनट अगर अपने को अच्छा शरीर मिला होता तो करके बता देते। हमारे मन में तो कई बार आता है कि अरे अभी क्या लोग जो है वो सोचते हैं कि मुनि महाराज जी वगैरह को जो है शिथिलता बहुत है और इस तरह का, अरे शिथिलता मन में नहीं है लेकिन क्या करें शरीर जो है वो इतना शरीर को आचार्य जी कहते कि ये शरीफ नहीं है शरीर ये शरीफ नहीं है, बेईमानी करता है ये उसके साथ में, इसको तो आराम तल भी चाहिए, अनादि काल का संस्कार है आराम तल भी का, इसको तो अब उसको उसके संस्कार को तोड़ना और उसको माने विजय प्राप्त करना उस पर तो आसान नहीं है। ये सब बड़ी छोटी निद्राएं 5 प्रकार की, दर्शनावरणी कर्म है भैया। और दर्शनावरणी कर्म का अधिक बंद कब होता मालूम? दिन में सोने से दर्शनावरणी कर्म का अधिक बंद होता है, ध्यान रखना क्योंकि वो समय नहीं था सोने का लेकिन आपको आ गई, अब बनेगा वो तो कोई बात नहीं, पर उसको विचार करना चाहिए ऐसे सोने के लिए नहीं सोना, निद्रा आ गई भाई अब अपन को नहीं था बस नहीं चला, पर अपन तो बढ़िया से गद्दा वद्दा बिछा के अब 2-3 घंटे सो ही रहे हैं वैसा नहीं। हाँ ये पाप कार्यों में रुचि नहीं होना कि हमारे पुण्य कर्म का उदय है तो ये तो मानना पड़ेगा, जिस व्यक्ति की पाप कार्य में रुचि नहीं होती करना पड़ता। ऐसा लिखा कि सम्यक दृष्टि जो है वो संसार के कार्यों में रुचि नहीं लेता, रुचि तो उसकी अपने आत्मा में हैं, पर क्या करें संसार के कारी भी भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां अपार वैभव उसके बीच में भी रहना पड़ रहा है, नियोग है। फिर उसको निभाते हैं वो, पर उसमें लिप्त रंजायमान नहीं होते हैं। और अपने पास तो थोड़ी सी चीजें हों तो उसी में अपन रचपच जाते हैं, कहते वो पाप का उदय है। पाप के उदय में ही या कि आगामी, अब दो प्रकार के होते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। अपन को पुण्य के उदय में अच्छी सामग्री मिली है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छी बुद्धि मिली उसमें कहते, लेकिन हमने उस बुद्धि का और उस बल का, उस वीर का, उस अच्छे शरीर का पांच इंद्रियों के विषय भोगने में लगा दिया, तो क्या होगा, ये पुण्य पापानुबंधी पुण्य है। और अगर हमने पुण्य के उदय में अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली और हमने धर्म ध्यान में लगा दिया तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य है और पुण्य का बंद होने वाला है, क्योंकि हमने उस पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली चीजों को छोड़ दिया। आप पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली चीजों को जितना छोड़ते जाएंगे वे उतना ही और मिलेंगी। ये मजा है, एक चीज छोड़ो चार चीजें और मिलती, और अगर ये कहीं पकड़े ना हो तो विचार थोड़ी मिल भाई भर मिल पे भाभी चली जाए थोड़े दिन के बाद जब उसका समय हो जाएगा, सीधा गणित है उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए जिस व्यक्ति की पाप में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि है, तो समझना पूर्व जीवन का पुण्य है और वर्तमान का पुरुषार्थ भी है, उसका अच्छा पुरुषार्थ है। बिना चाहे क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, देखो क्रोध का कोई ना कोई कारण तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक अंतरंग कारण होता है, एक बहिरंग कारण होता है। बहिरंग कारण ये है कि फलाने हमारे मन की नहीं करी तो हमें गुस्सा आ गया, ये बहिरंग कारण है। द्रव्य क्षेत्र काल हमारे अनुकूल नहीं मिला तो हमें क्रोध आ गया ये। और हमारे अंतरंग कारण कौन सा है, जो क्रोध हमने बांध रखा है कषाय, उसका उदय आया, कोई बाह्य निमित्त नहीं था, न हम चाहते थे, लेकिन फिर भी परिणाम खराब हो रहे हैं, संक्लेशित हो रहे हैं, बैठे बैठे जो है, और ना किसी चीज का स्मरण भी नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति जो प्रतिकूलता है उसका स्मरण आ जाने पर क्रोध आ जाता है, तो कहती वो भी कोई कारण नहीं है। तो फिर कौन सा कारण, अंतरंग में है, अंतरंग में कर्म का तीव्र उदय आ गया, तो आदमी फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है क्रोध से भी। बाह्य कारण कोई नहीं दिख रहा है कि किसी ने कुछ कहा भी नहीं, सब बातें बढ़िया हैं, फिर काय को गुस्सा, किस बात का गुस्सा, कहती अब भीतर कुछ परिणाम इस तरह के हैं। उस समय भी जो है शांत रह करके उन कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए, बिना चाहे भी उत्पन्न हो सकता है। लगातार किसी कार्य के करते रहने पर ऊब क्यों होने लगती है, अरे संसारी प्राणी जो है देखो लगातार किसी कार्य को करे तो ऊब उत्पन्न हो जाएगी, ये जानता है, इसलिए वो क्या करता है, बदल बदल के करता है। जबकि उसने कल भी वही रोटी दाल सब्जी खाई थी, आज भी वही खाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देता है, कल भी वही कपड़े पहने, सब दोहराता है वो, लेकिन दोहराने से ऊब ना जाए इसलिए बदल बदल कर थोड़ा, आज तो कुछ और दूसरे ढंग का, आज तो कुछ और ही दूसरा है, इस तरह मान करके जो है विषय सामग्री वही है पांचों इंद्री की। अगर कोई व्यक्ति सचमुच जो है रिपीट करने लगे तो जरूर से ऊब जाएगा। और कहते हैं कि भारत में अगर कोई विषय सामग्री से ऊब जाए तो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और विदेश में इतना ही फर्क है, विषय सामग्री से ऊब करके और कहां सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, अपने जीवन को नष्ट करने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत धन संपदा हो गई, बहुत चीजें हो गई, अब जीवन से निराश, क्या मिला इससे, ऐसा सोच करके। और अगर कोई बहुत बड़े महापुरुष अपने यहां पर जन्म लेते हैं, वो देखते हैं इस वैभव से मुझे कौन सा सुख मिला, चलो जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों काहे को शिव साधन, ऐसा विचार करते कि अरे इसमें सुख है ही नहीं, मैं व्यर्थ ही जो है और रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वस्तु स्थिति समझ करके और फिर मुक्त हो जाता, और दूसरा व्यक्ति उसमें से कुछ सुख जान नहीं पड़ता तो कहता इस जीवन को ही नष्ट कर देता हूं। संसार से ऊब क्यों होने लगती है, उसका कारण ही है रिपीटिशन है, उसका कारण रिपीटिशन ही है। और ये बच्चे लोग सो जाते ना माँ की लोरी सुनने से, तो साइकोलॉजी वाले क्या कहते हैं, ऊब जाते हैं वो कि जोई जो ये कही एक सुना चुपचाप परेशान हो जाते हैं, आ करते करते हाथ में ले लिया और ना, तो वो जो लगातार आज होती ना वो सो जाते हैं वो चुपचाप हैमरिंग है वो उनके ऊपर लगातार होने से वो उससे विड्रॉ कर लेते हैं वो एकदम उस चीज से। नहीं सही बता ऐसे नहीं हाँ सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं, साइकोलॉजी में है ये क्या कारण है कि सुकोश। अच्छा किसी व्यक्ति को ऐसा लिखा उसमें कि अगर ऊब पैदा, आप एक रसगुल्ला खाएंगे थोड़ा आनंद, दो रसगुल्ला खाए और ज्यादा आना चाहिए, तीन खाए और ज्यादा, चार खाए, दसवें रसगुल्ले में फिर कहोगे कि अब बस अब नहीं, अब क्यों अच्छा तो लग रहा था, पहला वाला जितना अच्छा लगा दसवां उतना अच्छा नहीं लगा। किसी को सिनेमा देखने की बहुत आदत हो और एक सुबह का बिल्कुल 6 बजे से दिखाओ उसको, 9:30 बजे फिर एक 12 बजे फिर उसी को 3:30 बजे फिर रात 12 बजे तक, वो क्या अब नहीं जे कब आऊं अब नहीं देखना। एक महाराज थे उनको कड़ी की बहुत आदत थी, उनको लोग जो है कड़ी महाराज कहते थे, कड़ी खाने की बहुत आदत थी उनकी। अब ठीक है अब आ गई वो आदत में उनकी आ गई थी, तो एक बार उनके मन में आया कि ये क्या जब हमने सब छोड़ा तो इतनी सी बात नहीं छोड़ पा रहे हम भी जो है क्या हमारा जीवन है, ऐसा उनके मन में स्वतः आ जाए। देखो जब तक स्वतः नहीं आवे तब तक कोई कितना समझा ले वो नहीं सकता। स्वतः आ गया तो उनने क्या कहा एक व्यक्ति से कि ले भयाने काड़ी बनाइयो जरा ज्यादा सी मताई से कह दियो। उनने कहा कि भैंसा ही तो कड़ी खाता बाज और कह रहे थे कड़ी ज्यादा बनाई, तो उनने जो है जरा ज्यादा बना ली। ठीक है भाई अब महाराज के, तो उनने दूसरे दिन गए तो ना पानी पिया ना कुछ किया, बोई बोई ले आओ इशारा करके वो बस कड़ी पीना शुरू कर दी। पीते गए जितना भर सकता था पेट में उतना पी ली। अब उसके बाद तो तय था बीमार पड़ेंगे, देव साहब बीमार पड़ गए। 2-3 दिन तक तकलीफ रही, लोगों ने बहुत बातें करी मगर वो मौन रहे कि जब तक अस्वस्थ हैं मौन रहे। फिर 3-4 दिन में जरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, आहार भी नहीं किया उपवास हो गए सब, उसके बाद आहार करके बैठे तो लोगों ने कहा महाराज अपने हाथ से आपने जो उपद्रव काय करो। तो फिर मैंने उनने क्या कहा था कि जी मानता नहीं था अब नहीं खाएगा कभी कड़ी, अब कड़ी की तरफ देखेगा नहीं अब कभी भी, अब छूट गई वो वैसे नहीं छूटती कड़ी। तो ऐसे जो है वो अब अपने उस पर विजय प्राप्त करना है, ये तो अपने अपने तरीके। हाँ ये भी है दलिया किसी का, बाबा जी तो कह रहे दलिया चिड़ाए रहे
स्वास्थ्य के अनुसार जो पचा सके
सही बात
जो पचा सके
उसको ही ले।
तुम जा कहो के नौजवान खाए तो काम नहीं है।
ठीक बात, क्या कारण है कि सुकौशल मुनि महाराज की माता ने अगले भाव में अपने ही पुत्र को सिंघनी बनकर के खाया। भाई ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कौन किसका पिता कौन किसकी माँ। एक जीवन में माँ और पिता बन जाने से कोई हमेशा अनंत काल के लिए हो जाए ऐसा नहीं है। जो हमारा आज मित्र है कल अगले जन्म में वही हमारा पक्का शत्रु भी हो सकता है, और जो आज शत्रु है वो अगले जन्म में मित्र भी हो सकता। 18 नातों की कथा पढ़ो है तो समझ में आएगा कि एक ही, हाँ 18 नाते एक ही व्यक्ति के जीवन में इस तरह के संयोग वियोग और बनते रहते हैं। इसलिए इस पे तो यही कहना चाहिए कि ये संसार का इसी का नाम तो संसार है कि जो कल तक अपनी माँ थी वही। आप तो इतनी पुरानी घटना तो छोड़ो, हम तो आपको ग्वालियर की घटना जब जो हमें याद आती है तो हमें लगता है कि अब क्या करें हम कौन से क्या कहें है? जब बड़ी बड़ी बातें करते तो फिर जब वो याद आ जाती तो लगता किससे क्या कहें। वो जैन नहीं थे, वो हमें सुना के गए थे कि मुनि महाराज जी आप जो बातें सुनाते हैं वो सब अच्छी सही बातें हैं, हम आपको एक और बात सुनाते हैं, आप सबको सुनाना कि ये संसार ऐसा है। कहते हमारे 4 घर बाजू में एक घर है, तो उनके यहाँ पर माँ है बेटी है और पिता है और कोई नहीं है उनके घर, और आपस में उनके झगड़ा हो गया तो मालूम क्या किया पिता ने जो है माँ और बेटी को घर से बाहर कर दिया। वे दूसरे के वहीं बाजू में किराए से रहने लगी। अब मालूम उनका पिता जो है जिसका जिसकी बेटी है और जिसकी जीवन साथी है उसके प्रति पिता का क्या व्यवहार है, उसकी बिजली कटवा देगा उनकी लाइन नल की लाइन कटवा देगा। यहां तक तो फिर भी ठीक था उपद्रव करना, लेकिन उनके यहां गुंडे भेजेगा, ये क्या चीज है ये संसार है। जिसने पैदा किया उस बेटी को उसी के लिए जो है और इस तरह से दुर्व्यवहार करता अपने जीव संसार में ये देखने में आता है। और तो दूर की बात तो छोड़ो, कौन क्या कहेगा कि जी आप ही के पिता हैं और सगा संबंध है। उसने मुझे खुद सुनाया कि वो पत्रकार हैं, बोले हमने इस घटना को पेपर में छापा है कि आज संसार में इस तरह के भी हैं। हमने आपको वहां का नहीं सुनाया था वो जो विदेश से उसने लिख करके भेजा था कि महाराज ये देखो तो कैसा है संसार, हम यहाँ विदेश में आए हैं तो अगर कोई कहता है कि हम इंडिया के हैं तो हमको बहुत अपना लगने लगता है, और अगर कहे कि एमपी के हैं तो हमें तो जो है और पक्का मित्र मालूम पड़ता, और अगर कहे हम बुंदेलखंड के हैं तो हम तो उससे अपने भाई के समान व्यवहार करते हैं। एक यहाँ विदेश में हम ऐसा करते हैं और जहाँ हम अपने भारत में रहते हैं वहाँ सगे भाई को भी दुत्कार के दूर कर देते हैं, वहाँ यहाँ हम संबंध बनाने फिरते हैं वहाँ हम संबंध तोड़ते चले जाते हैं। इसी का नाम तो संसार है। कहते विषयों की चाह कैसी होती है? अरे भाई, पांचों इंद्री की विषयों की चाह ऐसी है, विषय विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं समझना। बच्चे लोग जो है ये समझते कि हमारे पांच विषय हैं, छह विषय हैं, हैं? जी, विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, वो जो अपन पढ़ाई में करते, गणित एक विषय है। इसी तरह इंद्रियां हैं पांच, इंद्रियों के लिए जो अच्छी सामग्री लगती है वो कहलाती विषय। आंख के लिए क्या अच्छा लगता है वो हो गया उस आंख का विषय, है? कान के लिए अच्छे शब्द चाहिए वो कान का विषय हो गया। तो ये जो है विषयों की चाह कैसी है, विषयों की चाह स्पष्ट है कि हमें जो चीज रुचिकर मालूम पड़ती वो हमें मिले, वो हमारे हमारे उसका संयोग हो, इष्ट का संयोग हो, यही तो कहलाती विषयों की चाह। सरल शब्दों में यही है। सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है? अरे छह ढाला में क्या लिखा है? सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म युत सो प्रगटावन भान। और उसमें क्या लिखा? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग। आचार्य श्री ने इसको कैसे लिखा? पीयूष है विषय सौख विरेच ना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो संसार से पार करने वाली, जन्म मृत्यु के रोग को भी ऐसी अमृत के समान है। देव लोग तो अमृत का पान करते हैं फिर भी उनको मरना पड़ता है देखो, लेकिन तीर्थंकर की वाणी का जो पान करता है वो जन्म मरण से भी पार हो जाता है। अनिष्ट भक्षण में हिंसा और अहिंसा का क्या संबंध? यदनिष्टम तदवृत्ति, जो अनिष्टकारी है उसको छोड़ दो क्योंकि वह भी अभक्ष है, उसमें हिंसा होगी। हिंसा कैसे होगी? मान लो कोई चीज प्रासुक भी है जिसमें जीवों की हिंसा नहीं हुई लेकिन अनिष्टकारी है शरीर के लिए, हैं? तो अब जैसे ज्वर है, ज्वर के समय पर आप जो है दूध पियोगे तो कहते अनिष्टकारी है, कड़वा मालूम पड़ेगा और स्वयं भी अनिष्ट मालूम, पर दूध तो अच्छी चीज है। कहते लेकिन ज्वरवान के लिए दूध अच्छा नहीं है, और लोगों के लिए हो सकता है, उसके लिए भी अनिष्टकारी, तो अनिष्टकारी से बचो क्योंकि उसको भक्षण करने से अहिंसा अहिंसा से कैसे जोड़ो? तो कहती कि उससे अपने ही प्राणों का घात होगा। अपन उन्हें जा समझत हैं कि दूसरे के प्राणों को कष्ट पहुंचाओ सो हिंसा, और अपने चाहे चाहे जान सांसत में रहवे तो कचु हिंसा नहीं। अरे अपने प्राणों को भी जो है दुख पहुंचाना ये भी हिंसा है, कमती हिंसा नहीं है। अपने प्राण हलकान कर ले, जैसे अपन नहीं कहते कि अपने प्राणों को भी, अपने वो प्राण कौन से? दस हैं, पांचों इंद्री। अगर पांचों इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो आपने हिंसा करी, आपने मन बल का, वचन बल का और काय बल का सही उपयोग नहीं किया, शरीर से बहुत अधिक संसार का काम में काम किया, लो आपने हिंसा करी, काय प्राण की हिंसा करी। आप उनकी स्कूल स्कूल ए भैया स्कूल स्कूल
हम कुछियों की सुनवा रहे महाराज से।
खेरो तो तुम तो इनको दो तीन जने जे हैं भाई, तो बच्चे लोग उनको डांट पड़ेगी वहां पर।
हाँ,
बाद में सुनो, शाम को सुना दे। हाँ, हिंसा और अहिंसा इस तरह उसको अपन लगा लें कि जो दस प्राण होते हैं उन प्राणों का, श्वासोच्छ्वास भी एक प्राण है और आयु तो प्राण है ही, तो दस प्राणों में का घात नहीं करना, स्वयं के भी और दूसरे के, ऐसा इसका। आचार्य गुरुवर विद्या सागर। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है या नहीं? यदि की है तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? तो सबसे पहले यह समझ लें कि ब्रह्मा किसे कहना है, विष्णु किसे कहना है और महेश या शंकर किसे कहना है। इनके अर्थ समझ में आ जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जरा सा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ें अपन, भक्तांबर स्तोत्र का मेरे ख्याल से 24 या 25 नंबर का। बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरो शिभुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप केवल ज्ञान रूपी विशिष्ट बुद्धि के धारी हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। जो प्रतिष्ठ बुद्धि को धारण करे उसे ही तो बुद्ध कहते हैं। और शम करोति इति शंकरा, जो प्राणी मात्र के लिए सुखकारी हो या सुख का उपाय बताने वाला हो उसे ही तो शंकर कहेंगे। इसलिए आप ही शंकर हैं। विधाता विधेय मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले आप विधाता अर्थात ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहें, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि आप समस्त पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम हैं, विष्णु स्वरूप हैं। अब बताइएगा मुझे कि भगवान आदिनाथ को ही हमने मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले विधाता या कि ब्रह्मा कहा, उन्हीं को सब जीवों का हित चाहने वाले शंकर कहा और उन्हीं को जो है सबसे श्रेष्ठ पुरुष या पुरुषोत्तम माना, इसलिए उनको विष्णु कहा है। अगर ऐसे अर्थ में आप ब्रह्मा लेते हैं तो ब्रह्मा जो है मोक्ष मार्ग की विधि को बनाता है, उसका विधाता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि ठीक है आदिनाथ भगवान से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। उसके पहले भी मोक्ष मार्ग था, ऐसे असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी में तीर्थंकर हो चुके हैं, लेकिन इस अवसर्पणी के प्रथम तीर्थंकर चूंकि भगवान आदिनाथ हैं, इसलिए आदि ब्रह्मा या इस मोक्ष की विधि बताने वाले वे ही हैं। अब रही बात सृष्टि की, तो सृष्टि दो तरह की होती है, एक वो जो हम अपने भीतर रचते हैं और एक वो जो बाहर दिखाई पड़ रही है। ये जो बाहर दिखाई पड़ रही है सृष्टि, उसको रचने वाला कौन है? अगर हम ऐसा प्रश्न करेंगे और उसको रचने वाला इस सृष्टि से कोई अलग मानेंगे, तो फिर जो सृष्टि से अलग जिसने इस सृष्टि को रचा उसको किसने रचा और उसने कहां बैठ के इस सृष्टि को रचा? इसके पहले कुछ था कि नहीं था? अगर वो था तो उसे किसने रचा और जिसे जिसे ब्रह्मा ने रचा उसको किसने रचा? ब्रह्मा के फादर फोर फादर कौन है? फिर क्या करेंगे आप? फिर एक बहुत मुश्किल खड़ी होगी। तो कहते ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है भैया, ये तो शाश्वत है, अनादि काल से है, छह द्रव्यों से मिलकर के बनी हुई है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं। इन ये लोक्यन्ते यस्य सा लोका, जहां ये दिखाई पड़ते हैं उसे लोक कहते हैं और उसके बाहर जो प्योर स्पेस है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस तरह सृष्टि जो है छह द्रव्यों से मिलकर के बनी हुई, उसको ऐसे थोड़ी चुप कर पाएंगे आप, ऐसे नहीं, उसको उसको ले जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम खुद अभी छोटे हो उसी के बराबर। वो तो चुप इसलिए है क्योंकि उसको निकलने का मालूम पड़ रहा है कि निकल रहे हैं, इसलिए उसको निकाल दीजिएगा, उसको बाहर तक घूम के आने दो, फिर उसका मन बन जाएगा। ये जब भगवान का अभिषेक होता है तब कहते हैं कि क्षीर सागर तक जो है और एक लाइन लग जाती पूरे देवों की, तो वो हैंड ओवर करते जाते हैं, एक को कलश, दूसरे को कलश, तीसरे को, तो ऐसे करके उन्होंने जो है उसको हैंड ओवर करते गए कि भाई बाहर करना है। तो ऐसे तो चर्चा अपन ये कर रहे थे कि वो जो षष्ठी दिखाई पड़ती हमें, उसका तो रचने वाला कोई नहीं है, वो स्वतः जो है छह द्रव्यों से मिलकर बनी है, और एक जो सृष्टि हमारे भीतर है, जो सृष्टि हमने, जो संसार हमने भीतर बना लिया है, हैं, जिसमें आवागमन लगा हुआ है, उसका उसका कर्ता कौन है? उसका ब्रह्मा कौन है? हम अपने अंतरंग में जो सृष्टि बना के रखे हैं, जो संसार हमने बनाया, उसके कर्ता तो हम ही है, उसके स्वामी हम ही है, उसके रक्षा करने वाले और उसका संहार करने वाले शंकर भी हम ही है। अगर देखा जाए तो हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही महेश है। हम अपने भीतर जो राग द्वेष की सृष्टि बनाते हैं, उस सृष्टि को हम जब तक चलाना चाहें तब तक चला सकते हैं, जितना मेंटेन करना चाहें विष्णु बनकर के वैसा मेंटेन कर सकते हैं, और जिस दिन हम उस सृष्टि को नष्ट करना चाहें, आवागमन को, अपने संसार को नष्ट करना चाहें, उस दिन हम नष्ट कर सकते हैं। अगर हम साइंस की अपेक्षा से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ये तीन होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं और कुछ नहीं है ज्यादा अगर देखा जाए तो। हाँ, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है, जो और लोगों ने जो परिकल्पना कर ली है, कह रहे कोई व्यक्ति विशेष है जो कि ऊपर बैठा हुआ है साथ में आकाश के ऊपर और वहां बैठ करके सब कुछ चला रहा है, हम लोग जो है ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हैं, सृष्टि स्वतः जो है छह द्रव्यों से मिलकर बनी है। इसलिए भैया इस प्रश्न का जवाब यही हुआ कि सृष्टि की रचना जो है किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति ने नहीं की है, वो ब्रह्मा हर द्रव्य के भीतर उत्पाद व्यय और द्रव्य के रूप में छिपा हुआ है। हर द्रव्य में जो है उत्पाद होता है, उत्पाद ही तो ब्रह्मा है, वे ही तो शंकर है, और जो ध्रुव है हमेशा रहे आना वही तो विष्णु है जो रक्षा करने वाला है, है? अगर ऐसा देखें तो उत्पाद व ध्रुव से युक्त जितने भी द्रव्य हैं समस्त द्रव्य वे ही इसकी रचना करते हैं, और वे ही जो है पर्याय बदलते हैं तो व्यय हो जाता है, और जो हमेशा द्रव रहा आता है वही ध्रुव्य है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। इसलिए अलग से किसी ब्रह्मा नाम के व्यक्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कि जिसके चार मुख हों। अरे आदिनाथ भगवान जब सबसे पहले समोसरण में बैठे तो बड़ा अचंबा हुआ लोगों को, जो जहां से देखता था उसको लगता था भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, तो उनने कहा भाई एक मुख तो उधर से देखा था एक इधर से देखा था, जौन दिशा में जाओ वही दिशा से मुख दिखाई पड़ता, अरे चारों दिशाओं में इनके मुख होंगे तभी तो जो है ये सब दिशाओं से दिखते हैं, सो उनने चार मुख बना दिए। लो अब वे उनके चार मुख बन गए, जौन तरफ से देखो उस तरफ से, तो ये बाद को जो है प्रतीकात्मक चीजें थीं, ये प्रतीकात्मक चीजें फिर एक्चुअल होने लगी धीरे कि चार मुख वाला होगा, जबकि वो प्रतीक था कि आप सबकी तरफ देख रहे हैं भगवान हर दिशा में, उनसे क्या छिपा हुआ है, केवल ज्ञान से सारी दिशाएं और उनकी जो दिशाएं हैं और ऊपर नीचे दसों दिशाओं में भगवान देख रहे हैं, ये एक मुख चार राजे, एक मुख होते हुए भी जो चारों तरफ, या कह लो कि वे चार मुख चार अनियोगों के प्रतीक हैं, भगवान ने प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग और द्रव्यानियोग का उपदेश दिया है, एक ही मुख के द्वारा चार तरह से जीवों को धर्म समझाया है, इस अपेक्षा से भी हम उनको चार मुख वाला मान लेते हैं। जाति भले ही अलग है लेकिन भगवान एक ही हुए, एक ही हुए भी मनुष्य दूसरी जाति से द्वेष क्यों करता है? अरे भाई मनुष्य जाति तो एक ही है लेकिन उसमें भी जो है विभिन्न प्रकार के कुल और जातियां, माता के पक्ष को क्या कहते हैं जाति और पिता के पक्ष को क्या कहते हैं कुल कहते हैं, इस तरह से जो है कुल और जाति पहले भी चली, फिर बाद में वर्ण की व्यवस्था हुई कि भाई ये क्षत्रिय हैं ये वैश्य हैं ये ब्राह्मण हैं ये शूद्र हैं, ये वर्ण बने, तो इन वर्ण के पीछे भी उद्देश्य था, किसी को छोटा बड़ा किसी को कमती ज्यादा श्रेष्ठ या कि मूर्ख ऐसा नहीं था उसमें, जो ब्रह्म विद्या या कि आत्म तत्व को पहचानता है व्रत नियम संयम का पालन करता है वो ब्राह्मण है, बताइए, जो ब्रह्म विद्या को जानता है आत्मा आत्मज्ञान को जानता दूसरे को भी आत्मज्ञान देता वे सब ब्राह्मण कहलाएंगे, अकेले चोटी रखवा के तिलक लगा करके और दुपट्टा ओढ़ने से ब्राह्मण बनता हो तो फिर सब बन जाएंगे, तो कहते कि जो अपने बाहुबल के आधार पर सब जीवों की रक्षा का जिम्मा लेता है वो क्षत्रिय, उसकी आजीविका जो है अपने बाहुबल से चलती है कि भाई तुम निश्चिंत रहो, अरे चौकीदार भी क्षत्रिय कहलाएगा, वो आपकी पहरेदारी करता है वो आपकी रक्षा करता है आपके परिवार की वो क्षत्रिय है, और जिसने कहा कि भाई हम आपकी आवश्यकताएं रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे आप हमें कुछ देना उसकी पक्ष में, उन्होंने कहा ठीक आप व्यापार करो, वैश्य ये वैश्य वर्ण हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई खेती करोगे तो हम तुम्हारा हल बना देंगे, उन्होंने कहा हम लोहे का काम कर देंगे, उन्होंने कहा हम और दूसरे बहुत से शिल्प हैं उन सब शिल्प को करने लगे, उनको हमने शूद्र कह दिया, जो सेवा करते हैं वे शूद्र हैं, और अगर वैदिक संस्कृति में देखें तो जो ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए वह ब्राह्मण, और अगर वैदिक संस्कृति में देखें तो जो ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए वह ब्राह्मण, जो हाथ से उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय हो गए, और जो उधर से उत्पन्न हुए सो वो वैश्य हो गए, और जो पैरों से उत्पन्न हुए सो वे शूद्र हो गए, ये भी प्रतीकात्मक है, कछु उधर से पैदा नहीं हो, जैसे पैदा हो वैसे ही हो पैदा, माता पिता के बिना हवा में कोई नहीं पैदा होते ऐसो पाव में से निकल के, है कि नहीं? तो अब इनके अर्थ क्या है, ब्रह्म विद्या जिसके पास है वो ब्राह्मण, मस्तिष्क निकला हुआ है बाहुओं से मतलब रक्षा करने का स्वभाव है क्षत्रिय है, पेट भरने के लिए आजीविका करता है वो, पेट भरने का काम कौन करता, वैश्य करता है, आपके सबकी आवश्यकताएं पूरी करती, पेट की ही आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के जीवन में, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, कौन कमर्स आपके ट्रेड या कि कॉमर्स ये सब कौन करता है, व्यापार व्यवसाय कौन करता है, वैश्य करता है, और फिर चरण, चरण से निकला मतलब सेवा करने वाला, ये इस तरह से वर्ण बने, बात को फिर इनमें आपस में जो है एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ कहने कहलवाने का जो अहंकार जागा, मनुष्य तो अहंकार का पुतला है ही, तो दूसरे से अपने को श्रेष्ठ, अरे भाई दूसरे को श्रेष्ठ कहना तो बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे से अपने को श्रेष्ठ कहलवाना ये तो पतन का कारण हो जाता है, दूसरा हमें श्रेष्ठ कहे बहुत अच्छी बात है, हम भी दूसरे को श्रेष्ठ कहें इतना तो काम चलेगा, लेकिन हम तो अपने को श्रेष्ठ कहें और दूसरे से कहलवाना चाहें और दूसरे को हम बुराई करें, हर आदमी दूसरे को बेईमान कहे तो बताइएगा कौन ईमानदार होगा, सामने वाला कह रहा है कि ये बेईमान है और हम कह रहे हैं कि आप भी बेईमान, अब दो ही बेईमान हो गए, और अगर दो ही एक दूसरे के ईमानदार कहते तो कोई बेईमान नहीं होता है? इसी तरह इसमें भी हुआ, बाद बाद में ये सब चेंज हो गया। अच्छा फिर दूसरी चीज एक और हुई कि बड़ी जाति में पैदा होकर, माने अच्छे उसमें पैदा होकर के भी कुल में, और बाद में आचरण गंदा हुआ, तो फिर लोगों ने कहा भैया जी जिन जे भी देखो जिनका आचरण अच्छा नहीं है वो नीच कुल हो गया, मद्य मधुमांस का सेवन करते हैं, हैं, और जो है विभिन्न प्रकार के उपद्रव में पड़े रहते हैं और खराब काम करते हैं। अरे आजीविका चलाने के लिए कोई जरूरी है कि मछली मारो आप? आजीविका चलाने के लिए क्या मांस का व्यापार करना जरूरी है? क्या शराब का व्यापार करना जरूरी है? क्या आजीविका के ये तरीके हैं क्या? तो आजीविका तो चलानी है, लेकिन आप इस तरह के व्यापार करेंगे तो हम आपको वैश्य नहीं कहेंगे, हम आपको शूद्री कहेंगे। अब वो बुरे काम करने वाले को, अब ये हो गया कि जो बुरे काम करे वो शूद्र हो गया, अब बुरा लगने लगा। ये कहने में किसी को शूद्र कह दो तो बुरा ही मान जाएगा है? और अगर किसी को कहो कि आप बड़े सेवक हैं, जितने नौकरी पेशा वाले हैं वे सब कौन है? अब अपने मुंह से नहीं कह सकते अपन, अब शूद्र के लाएंगे तो अब बुरा लग जाएगा कि वाह हम तो सर्वेंट, सर्वेंट कह दो किसी को, लेबर कह दो किसी को तो बुरा लग जाएगा। और ये कहो कि ऑफिसर हैं, 15,000 रुपया कमा रहे, मगर कहना नौकर नहीं कह सकते उसको, ऑफिसर कहेंगे। वो चपरासी को नौकर कहेंगे, खुद को नहीं मानता ऑफिसर, अपने को नौकर नहीं मानता, जबकि वो कभी पे मिल रही। मजा देखो, फिर बाद में ये सब चीजें बनती चली गई भैया। लेकिन इतना जरूर है कोई कैसा भी हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, द्वेष करने का तो किसी धर्म में नहीं कहा। द्वेष करने का जो आप कह रहे हैं कि एक जाति वाला दूसरे से द्वेष, द्वेष तो बुरा है, एक जाति वाला दूसरे से करे क्या? एक ही जाति के लोग आपस में द्वेष करें तो भी वो भी ठीक नहीं है, इसलिए ये धर्म नहीं है। इसमें भगवान एक है, भगवान तो वास्तव में एक ही है, अगर देखा जाए तो जो वीतरागी हैं वे सब एक ही हैं। 24 तीर्थंकर के बाहर से देखो अगर, उनके जे चेहरा थोड़ी रह हुई है, मगर अपन ने कैसी मूर्ति बनाई, एक सी सब भगवान की। नीचे चिन्ह ने बना हो तो चिनार तक ने हती कि जो उनको चेहरा है जी महावीर स्वामी है। क्यों बनाया ऐसा? कहते वीतरागता तो सबके भीतर एक जैसी है, अनंत भगवान है सिद्ध, सब वीतरागी हैं इसलिए एक हैं। लेकिन आप जो है रागी और वीतरागी हूं गड्ढ मड्ढ ने करो, रागी को भी देवता मानो, वीतरागी को भी, तो जी ने पुसाएगा काम, जी नहीं चलेगा। वीतरागी हैं सो भगवान हमारे और तुम्हारे नहीं, जी ने कहो कि इनके भगवान के हमारे भगवान, वीतरागी हैं सो तुम्हारे सो हमारे, तो बराबर है। मगर ऐसा नहीं कि आप राग द्वेष से युक्त पूजो, आप राजा रामचंद्र जी से जय जनंद कह सकते हैं लेकिन राजा रामचंद्र जी से नमस्तु नहीं कह सकते। पहले सब छोड़ो, हमारे भगवान महावीर स्वामी को भी आप मुकुट लगा के और पोशाक पहना के ले आओ तो हम जय जनंद कर लें, उससे ज्यादा नहीं। मैंने हम लोग जो है जैसे आचार्य श्री का ही है, आचार्य श्री के बचपन की फोटो ले आओ तो अपन को सहसा प्रणाम थोड़ी करेंगे, बस ये मानेंगे जी हमारे आचार्य श्री के बचपन की, और ऐसी वाली फोटो में फौरन नमोस्तु। किसी बच्चे को भी दिखाओ, मतलब हमारा कहना कि एक वीतरागता, जैसे महाराज ने कहा कि आज कीमत किसकी है, वे जो छोड़ दे पैसा राग वो उसकी कीमत नहीं है, वो जो आपको ने प्राप्त कर लिया है जिन गुण संपत्ति जिसको अपन कहते हैं वो मुख्य है। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं? जब कोई अपने ऊपर आक्रमण करे और अपने प्राणों का घात करे, या अपने परिवारजन के ऊपर, या अपने गुरुओं के ऊपर, या अपने मंदिर देवालय अपने शास्त्र इत्यादि के ऊपर कोई आक्रमण करे, तो उस समय जो हम अस्त्र उठाते हैं और उसका विरोध करते हैं उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। शावक को ये विरोधी हिंसा क्षम्य है कि भाई ठीक है, अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर कोई विपत्ति आ जावे, या अपने परिवार अपने समाज अपने देश के ऊपर भी विपत्ति आ जावे, तो उसके लिए जो हम देखो अपने देश में कभी भी हम बॉर्डर पर किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते कि हम तुम्हारी जगह हड़पने के लिए आक्रमण नहीं, तुमने आक्रमण किया तो हमने जवाब दे दी, हमेशा हमने जवाब दी आत्मरक्षा के लिए, फॉर डिफेंस ओनली, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हम जो हिंसा करते हैं वो विरोधी हिंसा कहलाती। अतिचार कितने होते हैं? अतिचार तो भैया हर एक व्रत में लगते हैं, 12 व्रत हैं, सम्यक दर्शन है और सरलेखना है, इन सब के अतिचार गिनाए गए हैं। तो अब आप अतिचार किसे कहते हैं ये पूछो अगर, तो लिए हुए व्रतों में शिथिलता आना या उसमें प्रमादवश कोई भूल चूक गलती हो जाना, इसको अतिचार कहते हैं, और व्रतों का भंग हो जाना ये अनाचार कहलाता है। इस तरह अतिचार और अनाचार दोनों अपने यहां पर दो टर्म्स आती हैं। स्वाध्याय किसे कहते हैं? अरे भाई स्वा अधि आत्मानम अध्येति, ऐसा कह लो अपने आत्मा का अत्यंत निकट से अध्ययन करना, उसका नाम ही स्वाध्याय है। आप अपने आत्मा का कैसे अध्ययन करें? कहते जिन्होंने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया उन्होंने जो हमें लिख करके दिया है उपदेश उसको पढ़ो, तो फिर वाचना प्रचना अनुपेक्षा आमनाय धर्मोपदेश ये सब स्वाध्याय की वैरायटी है। अपन इस समय कौन सा स्वाध्याय कर रहे हैं? प्रचना नाम का स्वाध्याय करते हैं, हैं? इस तरह से। और धर्मोपदेश भी, जैसे शाम को जो है सब महाराज जी वगैरह थोड़ा थोड़ा सबके लिए संबोधन देते हैं, वो संबोधन क्या कहलाएगा? धर्मोपदेश। हाँ, करुणा करके हमारे लिए और दो बातें सुना दी। वे दो बातें आप भी जानते, हमें कई बार लगने लगता है कि हम आपको कोई नई बात थोड़ी अलग से सुना रहे, सबको सब मालूम है, है? लेकिन उस समय कौन सी मुख्यता है? नहीं, महाराज व्रती ने जो है दो शब्द भी कहे। अरे आचार्य महाराज जब हम लोगों को बहुत मन भरे मन से कहते हैं, ये भैया देखो कषाय नहीं करना, अपन भी जा कह सकत, ऐसा कोई भी कह सकत कषाय नहीं करना, जो अपन भी जानते, लेकिन उनके मुख से सुनकर कैसा लगने लगता कि अरे अपने अब बिल्कुल नहीं करना भैया। तो कम से कम वो दिन तो बड़ा वो रहेगा, थोड़ा बहुत भी कषाय का भाव आएगा। नहीं देखो महाराज क्या कह रहे थे, कषाय नहीं करना। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो किताब में पढ़ लेते तो। इसलिए धर्मोपदेश महत्वपूर्ण है। भले ही महाराज ने एक कहानी सुनाई, वह कहानी आपने पहले 17 दफे सुनी हो, पढ़ी हो, मगर उस समय उन्होंने जो अपने मुख से सुनाई है करुणा करके, उसमें से पता नहीं कौन सा वाक्य किसके हृदय में परिवर्तन ला दे उसी समय। आचार्य श्री कहते कि जाने समझियो कि किसी बड़े व्यक्ति के उपदेश से ही, तीर्थंकर के उपदेश से ही सबको कल्याण हुई है। अरे अभी अभी दीक्षा लेकर के बैठे हैं मुनि महाराज, और उनके किसी वाक्य से किसी जीव का कल्याण होना हो तो क्या देर लगने वाली उसमें है? आठ आठ वर्ष और अंतर मुहूर्त में जितना छोटा सा बालक है और रत्नत्र प्राप्त कर ली गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके भी बैठे समूह शरण में, और उनके उपदेश से सबको कल्याण हो रहा हो। और अबे माँ जासूत रही के बोला का कहां चलोगे, हमारे 8 साल को भटकने जाए, हिराने जाए, हैं? छोटा है इसलिए घूम ना जाए, और वो घूम ना जाए, वो तो पहुंच गया समोषण में और उसने खुद की भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 बरस का कितना छोटा सा होता होगा तीर्थंकर, 8 बरस के देखो तो अद्भुत लगता हो।
जब बेल खीरा से गमन करो तो मान ले
हानि में भी उतने ही या उससे अधिक लाभ। महापुरुष, महाराज का कहने का आशय समझ गए कि महापुरुष जो है जो बात कहते हैं वो उसमें सच्चाई होती है। हाँ, वो उनके अपने अनुभव से भले ही छोटी सी बात कही कि देखो अभी थोड़ा रुको फिर बाद में देंगे, अपन को लगता कह रही तुरंत ही दे देते अभी मैं कहा मुनि बनावे में, लेकिन ठहरो अभी। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे ब्रह्मचारी और ये आते हैं, लेकिन आचार्य श्री सबको देख करके, एक ब्रह्मचारी जी को तो हम चौंक गए, वो हमको लेके गए थे, हम भी चुपचाप बैठ गए। आचार्य श्री का चेहरा देख करके हम चुपचाप बैठ गए, हमने उनकी सिफारिश तक नहीं करी, हमने कहा तुम ही अपने आप करो क्योंकि अभी लग रहा है। और जैसे उनने कहा कि महाराज जी हमें व्रत लेना, हाँ बाद में अभी देखेंगे, बस इतना ही कहते हैं, हाँ बाद में अभी देखेंगे। उनको व्रत नहीं दिया। आज ये स्थिति है कि उनके परिवार की सेवा के लिए अगर वे चले जाते तो कोई नहीं था, पिताजी की दोनों आंखें चली गई और वो अब लड़का सेवा कर रहा है। और मैंने अब ये है स्थिति ये है कि हो सकता कि उसको शादी करना पड़े। और उस समय कैसे उन्होंने आंख परख के देख लिया कि अभी ठहरो इनको, ये जल्दी में आ गए हैं, अभी इन पर जिम्मेदारियां बहुत आने वाली हैं। तो ये वही हमने जो कहा ना कि आपसे कि हमसे कह दिया किसी महापुरुष ने कि कषाय मत करो, उसका एक अलग हिसाब है। और ऐसे सामान्य कोई कह देवे तो इसको धर्मोपदेश, ये भी स्वाध्याय है धर्मोपदेश भी। इसकी हानि में भी उतना ही और उससे अधिक लाभ का बीज छिपा रहता है, ये आचार्य श्री का वाक्य है। अलाभ में भी लाभ के समान, कल ही तो सुन रहे थे टेप में, अलाभ में भी लाभ के समान जो व्यक्ति अनुभव करता है, जैसे कि किसी की कोई हानि हुई, हानि कौन सी होती है अगर विचार करें अपन थोड़ा सा, हानि और लाभ अपन कौन सा मानते हैं जिस संसार में चीजों का, और इनका हानि लाभ, इनका हानि, इनकी तो हानि नहीं लाभ है। तो वो बनारसी दास जी, हाँ थे, सुन के चोर घुस गया, चोर घुस गया, सो उसने पोटली बांध ली, अब उठने रही थी, सो चुपचाप नहीं आन के और उठा के वो के मुंह पे धरवा दी, अंधेरे में कद क्या देखेगा उस, लेके चला गया वो घर। सो माँ ने जब सामान खोल के देखा सो कहने लगा पंडित के तेरा चोरी करी, कहले हाँ, बोले दिया सब सामान, वो अपन को पचेगा नहीं उसका, ईमानदारी का है। सो वापिस लेके आए पटरिया के, ले लो अपनी वापिस। तो बनारसी दास जी ने कहा कि ले भैया अब नहीं लेंगे, हमने तो जैसे ही आप ले गए थे सो ये सोच लिया कि अच्छा हुआ और परिग्रह कम, हमारी सीमा और हमने टाइट कर ली, वैसे परिग्रह का परिमाण था तो सब वो के बिना चलेगा था। विनोबा जी जो है जेल में रहे, जेल में एक लोटा मिला था, एक परात मिली थी, थोड़ा सा बिस्तर मिला था, बस उतना ही। सो बाहर आकर के कहने लगे कि जब जेल में 13 महीना इतनी में काम चल गए तब इससे ज्यादा काय को रखें जिंदगी में, हाँ, और उनने उतना ही रखा अपनी पूरी जिंदगी भर, बताओ आप ये जो है उन्होंने क्या सोचा कि हानि नहीं लाभ है, संसार की जितनी चीजें हमसे अलग भाई उतनी आनंद रहो, ऐसा ये है कि हानि भी जो है लाभ का बीज, भौतिक सुख सुविधा की सामग्री का वियोग हो जाना ही लाभप्रद है। और वैसे अगर देखा जाए सच्चे देवगुरु शास्त्र का वियोग हो जाए तो ये लाभप्रद नहीं है, ये तो हानिकारक है। जब भरत चक्रवर्ती जो है हल्के से उदास हो गए थे भगवान ऋषभ देव का को जब मोक्ष हुआ तो थोड़े से चेहरे पर हर्ष भी था लेकिन हल्का सा विषाद, तो पूछा कि आप क्यों विषाद है आपको, आपके तो पिता हैं। और फिर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को तो मोक्ष हुआ है, खुश होना चाहिए, कहते बहुत खुश हूं मैं, लेकिन मन में एक विकल्प आता है कि अब तीन समय कौन मुझे धर्म की बात सुनाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही जो है अपने मन में आना चाहिए कि अरे जो साधर्मी है उसके वियोग होने पर कौन सा दुख होता है, उससे कुछ सुख सुविधा थोड़ी मिल रही थी, उससे धर्म का उपदेश मिल रहा था, वो मेरा लाभ था। तो वहां पर जो है दूसरा दृष्टि लगा लेना। अच्छा एक और, आप अपने कॉलेज टाइम की घटनाएं सुना चुके हम, वो घटना जब आपके सर आपके पैर छूने पर करना बंद कर दिया था, नशा बंद कर दिया था, वो मेरे जीवन की घटना नहीं है, वो तो मैंने आपको सुनाई थी, वो बहुत मजे की घटना है, महाराज को भी नहीं मालूम होगी, ऐसी पढ़ी थी हमने कहीं पर एक, हाँ वो और दूसरी जगह भी सुना सकते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण, एक एक लड़का जो है स्कूल में पढ़ने गया, अब वो नया नया गया था तो एक गुरु जी को जब भी मिल जाए तो उनके पैर छू ले और नमस्कार कर ले। अब उन गुरु जी के बारे में ये था कि वे गुरु जी शराब पीते थे और सब बच्चों को मालूम था, सो और बच्चे उनको बिल्कुल आदर नहीं करते थे उन गुरु जी का, लेकिन जो नया लड़का पहुंचा था जी बहुत आदर करता था उनका। इस लड़के को भी और लड़कों ने बता दिया कि जी गुरु जी ऐसे हैं, उसने कहा रहे आवे अपन तो गुरु जी हैं सो अपन तो पैर छुएंगे, पैर छुए और नमस्कार करें, भारी आदर देवें। अब 8 दिन हो गए, एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का एक गली में मिल गया उनको रास्ते में, वो वहां से आ रहे थे गुरु जी, यहां से लड़का जा रहा था, उसने फिर प्रणाम किया फिर पैर छूने लगे, तो कहने लगे तुम हमारे पैर मत छुआ करें। उसने कहा गुरु जी हम आपके पैर नहीं छुएंगे तो क्या आप हमसे बड़े हैं, कहले तुम नहीं जानते कि हम कैसे हैं, कहले आप कैसे भी हमारे तो गुरु जी हैं, तो कहने नहीं तुम हमारे अब पैर नहीं छुआ हुए, कहले आपको क्या तकलीफ हम पैर छूते हैं, कहले तकलीफ जा है कि 8 दिन से पी नहीं पा रहे शराब। अब बताओ तुम मेरे पैर छूते हो इसलिए मुझे इतना सम्मान देते हो, जब जब मैं शराब की तरफ मेरा दृष्ट आंख जाती तो याद आता कि और कोई नहीं हो लेकिन वो लड़का तो मुझे इतना सम्मान देता और मैं ऐसा खोटा काम कर रहा हूं। उसकी जो है उस लड़के ने और गुरु जी की हम सम्मान कर करके और उसकी बुरी आदतें सुधार दी। अरे भाई कोई व्यक्ति बुरा भी, इसका उस उदाहरण ये था हमारा कि कोई व्यक्ति बुरा भी है फिर भी आप उसको अच्छा कहो तो कहो वो सच्ची में अच्छो बन जाए, और अपन तो अच्छे आदमी को बुरा कह के बुरा बना दे, नहीं है अपने यहां पर है इसमें उदाहरण जो है। अरे कोई बुरा भी है तो भी कहो कि नहीं भैया अपन तो ना कहो, कम से कम वो जैसा है तो वो जाने, अपन उसको अच्छा ही मानो तो सचमुच उसको भी लगेगा कि देखो जी तो हमें इतना अच्छा मानते और हम कितने खराब हैं, तो अपने आप वो अपने आप को सुधारेगा। ऐसी उसमें थी आचार्य गुरुवर विद्यासागर। आज तो आपने बिल्कुल अलग ही भजन बोल दिया, इसकी आशा नहीं थी हमें कि आप ऐसा वाला भोजेंगे। इस तरह के भजन में कौन आनंद आता, ये जो ये तो एक तरह से फिल्मी रागी है थोड़ी सी हटकर। अच्छा हैं मुनी महाराज जी ने बनाया हो चाहे कोई महाराज, वो एक भजन बोला उन्होंने बहुत है तो प्रचलित है पर उतना बढ़िया नहीं जितना कि पुराने भजनों में आनंद आता है वो इसमें नहीं आता, फिर भी चलो ठीक है चलेगा। जो व्यक्ति अपने साथ प्रतिकूल व्यवहार करे उस व्यक्ति के प्रति मौन रखना चाहिए क्या बैर कहलाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। अपन पढ़ते हैं दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं है मुझको आगे, शोभ का अर्थ द्वेष ही तो है यकि घृणा है, तो हमें भगवान ने यही उपदेश दिया कि रख सको तो प्राणी मात्र से मैत्री रखना, अपने से अधिक गुणवान को देख करके हर्ष का भाव रखना प्रमोद भाव रखना, नहीं तो अक्सर ईर्ष्या हो जाती अपने से बड़े को देखकर, तो कितनी अपने से अधिक गुण वाले के प्रति तो प्रमोद का हर्ष का भाव, और दीन दुखी को देखकर कृपा का भाव करुणा का भाव, और अगर कोई दुर्जन है अपने प्रतिकूल है तो उसके प्रति कैसा, कि तिमाध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो, टेढ़ी चाल चलने वाले के प्रति जो है माध्यस्थ भाव रखना, भैया तुम्हें जब अकल आए सो करियो, जैसो तुम्हें करने हो सो करो, हमने देखना ही बंद कर दिया। सबसे अच्छा ना राग ना द्वेष, ना निंदा करेंगे ना प्रशंसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का समर्थन कर देंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा, वो उन मार्ग पर चलने के लिए बढ़ावा है। इसमें भी गलती मानी जाती कि आपने दूसरे का दोष जानते हुए भी उसकी मदद की है तो आपको भी, आप भी दोषी माने जाएंगे, इसलिए उसकी मदद भी नहीं करना, उसकी प्रशंसा भी नहीं करना, लेकिन निंदा भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, क्या रखना, माध्यस्थ भाव रखना, मौन हो जाना। तो इनने यही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करे तो हमें उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, उसके प्रति जो है वो साम्य भाव रखना चाहिए, और साम्य भाव में तो मौन ही रहना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा। जैसे कि समुद्र के किनारे खड़े होकर के क्या देखते हैं, लहरें आती हैं चली जाती हैं, ना हमें लहरों के आने से हर्ष है ना उनके चले जाने से कोई विषाद है, हम तो सिर्फ शांति से बैठे, तटस्थ ये कहलाता, तट पर स्थित के समान। जैसे तट पर स्थित व्यक्ति आती हुई जाती हुई लहरों में हर्ष विषाद नहीं करता, इसी तरह साम्य भाव धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर अपने प्रति ऐसा भाव रखे तब भी, अग्निपद सुनाने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं आखिरी में वैराग्य का अर्थ क्या होता है। विरक्ति से बना हुआ है वैराग शब्द, तो देखो सूत्र जी का पाठ करते हैं तो उसमें क्या आता, हिंसान रतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, इन पांच पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है। वैराग्य किसे कहेंगे, विरक्ति का नाम ही वैराग्य है, इन सब चीजों में पांच पापों से विरक्त होना ही वास्तव में वैराग्य है, या कि संसार के आवागमन से विरक्त हो जाना। संसार में तो आवागमन लगा है, जन्म मरण की पीड़ा है, तो उससे हम उदासीन हो गए, तो वैराग्य एक तरह की उदासीनता है, वो भी काहे के प्रति, पापों के प्रति। नहीं तो आप कहो कि धर्म के प्रति वैराग्य है माओ है, तो फिर तो बहुत आनंद रहेगा। आचार्य कहते हैं कि हम लोग जो है आत्मा के प्रति राग रखते हैं और बाकी आप लोग बड़े वैरागी हो, क्योंकि आपको आत्मा परमात्मा के प्रति कोई राग है ही नहीं, बिल्कुल वैरागी हैं आप। तो यहां पर वैराग्य का अर्थ क्या लेंगे, पांच पापों से विरक्त होना, कषायों से, विषय और कषायों से विरक्त होने का नाम, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी पर, यही अहित करने वाली जो आत्मा के विषय और कषाय हैं उनसे विरक्त हो जाना ही वैराग कहलाता है। अंतरंग में आसक्ति का नहीं होना, ममत्व भाव का नहीं होना। तीन कम नौ करोर, देखो तो हिंदी की क्या हालत बना रखी है, बड़ा दुख होता है, हैं? वैसे तो हम लोग जो है अंग्रेजों को अपने देश से उनके यहां भेज चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है अंग्रेजियत नहीं गई। जब जो है गांधी जी और नेहरू जी, नमस्तु महाराज, तो गांधी जी कहते थे कि तुम हमारी भाषा नहीं बोलते, नेहरू तो वो कहते थे बापू आपकी तो सब बात मानता हूं, बोले तुम बात तो सब मानते हो पर मैं ये चाहता हूं कि अंग्रेज भले ही भारत में रहे आए लेकिन अंग्रेजियत चली जाए, और तुम ये चाहते हो कि अंग्रेजियत रही आए और अंग्रेज चले जाएं। वो कहते थे कि हमें हमारे भीतर जो है भाषा का कोई आग्रह नहीं है, भाषा सब अच्छी है लेकिन अपनी मातृभाषा से बड़ी तो कोई भाषा नहीं होती, दूसरे की माँ हमारी माँ के बराबर नहीं हो सकती, हम उसको माँ तो कहेंगे, दूसरे के पिता को पिता तो कहेंगे लेकिन हमारे पिता नहीं है। इसी तरह भाषा को हम भाषा तो मानेंगे, अंग्रेजी को अच्छी है भाई आपको पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर अपनी हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। देखो तीन कम लिखना था तो इनने कम लो, तीन कम लो करोड़ों, अब हमने तो इसका ऐसे ही माने पढ़े लिखे थोड़े हैं सो हमने अर्थ हैं सो निकाल लो, जिन्हें पढ़ो लिखो तो कोई गांठ निकाले वो बताओ, तो इनको लिखना था तीन कम नौ करोड़, तो ऐसा लिख दिया। मुनिराज की जय बोलते हैं उसका अर्थ बता दें आप। देखो ऐसा है, छठे गुण स्थान से मुनि का पद आ जाता, महाव्रत आ जाते, उसको मुनि कहते हैं अपन, तो छठे गुण स्थान से लेकर के चौदहवें गुण स्थान तक सब मुनि कहलाएंगे, उनकी सब संख्या अधिक से अधिक कितनी है, तो कहते नौ करोड़ में तीन कम है, इससे ज्यादा नहीं होगी, पूरी नौ करोड़ हो जाती, कहती अब हो कैसे जाती, जितनी है उतनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, कम तो हो सकती है। अभी वर्तमान में 3 कम 9 करोड़ ही हो, ऐसा तो है नहीं कोई जरूरी। हो सकता है कि 3 की जगह पर 10 कम हो 9 करोड़ में, हो सकता 50 कम हो, तो अधिकतम कितने होंगे? 3 कम 9 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और उसमें सब हैं, छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, सब की संख्या अनंत तक मिला करके जो है सब ये कहलाता 3 कम। ये 2.5 द्वीप में तो होते ही है, और तो कहूं मुनि महाराज हुई हैं इन्हें 2.5 द्वीप के बाहर, आप बताओ। हाँ, वही वही संख्या रहेगी, छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक। सिद्धों की नहीं जोड़ना, सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत हो जाएंगे हैं। तो 14वें गुण स्थान तक तो महाराज समोशरण में बैठे हैं, योग निरोध कर रहे हैं, तो भी 14वां गुण स्थान बनेगा उनका, इस अपेक्षा। अच्छी बात, जिस व्यक्ति के बारे में हम जैसा विचार करते हैं, वो व्यक्ति चाहे कितनी दूर हो, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे मन पर वैसा ही पड़ता है या नहीं पड़ता। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, अच्छा प्रश्न है, जिस व्यक्ति के बारे में हम जैसा विचार करते हैं, वो व्यक्ति कितने भी दूर हो, देश और काल दोनों मायने नहीं रखते। देखो, कोई अपना प्रिय जन हो और 1000, 2000, 5000 किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, उसके सुख दुख में हम जो है वो अपने सुख दुख महसूस करते कि नहीं करते। अब जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि अरे ये क्या चीज है जो 1000 किलोमीटर दूर रहकर अपने किसी प्रियजन के दुख से स्वयं को दुखी कर देती है, मन को मत करके उसमें से आंसू निकाल के ले आती है। अरे ये जो है आत्मीय भाव है, है? तो जब हमें व्यक्ति इतनी दूर है उसके प्रति हमारा संबंध है, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा मैसेज उसके पास भी पहुंच जाता, किसी के बारे में आप बुरा सोचिएगा वो भी आपके बारे में बुरा ही सोचेगा, ध्यान रखना। हमने कहा था कि एक साइकोलॉजी में प्रयोग हुआ था जिसमें 15 लोग शामिल हुए थे, और हर एक को एक कागज दिया गया और एक पेंसिल कि आपको नाम लिखना है, इन 15 में से आप किसको अच्छा मानते हैं किसको बुरा मानते हैं, तो अच्छे और बुरे के नाम लिखो। तो ठीक है, सबने अपने लिखे, लेकिन जो उसके रिजल्ट आए वो बड़े मजेदार थे। एक व्यक्ति ने किसी का भी नाम बुरे लोगों के नाम में नहीं लिखा, उसने 15 को ही अच्छा कहा, तो उस व्यक्ति का नाम भी उन 15 लोगों में से किसी ने बुरे वाले में नहीं लिखा। और एक व्यक्ति ने अपना भर अच्छे में लिखा, बाकी 14 का बुरे में लिखा, तो उसका नाम सबने अपने में लिखा कि ये बुरा आदमी है, ये क्या चीज है। तो कहते हैं मन का असर पड़ता है। एक बच्चों की पंचतंत्र की कहानी नहीं आती है बच्चों के लिए, एक एक बैल और शेर में बड़ी दोस्ती थी, है? तो लोमड़ी को अच्छा नहीं लगता था, रहते हैं कुछ लोग चालाक लोग, तो उनको जो है अच्छा नहीं लगता, अरे इनकी अच्छी काय बन रही है। तो उनने कहा कि अब इनको अपन कुछ ना कुछ फूट डाल दी उनने, कैसे, उसको जाके बैल को कहा कि अरे वो जो तुम्हारा मित्र है ना शेर, आज देखना तुम, तुम्हारा हिसाब बराबर कर देगा, वो बहुत नाराज दिख रहा था वो। उसने कहा ऐसे कैसे, कोई बात ही नहीं हुई है। कहले नहीं, वो तो बहुत दिन से है, वो तो आज हमसे कह रहा था कि अब देखो मिलेंगे तो हम ठीक कर देंगे उसको, बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया है बैल ऐसा करके। तो बोलता कि हमें तो नहीं होता विश्वास। तो लोमड़ी बोली कि नहीं हो विश्वास, पर जब मिले तो देखना, वो तुम्हारी तरफ ऐसे घूर के देखेगा तो समझ जाना कि सही है। उसने कहा ठीक। अब शेर के पास पहुंची, बोले कि बहुत, वो तो नाराज हो रहा था बैल और कह रहा था कि आज तो मिलने दो शेर को, मिलेगा तो दो दो हाथ कर ही लेंगे, आज तो बहुत दिन से सोच रहे हम ऐसा जो है। उस शेर को बोल दिया, तो शेर ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कह ले आपको विश्वास नहीं है तो देख लेना, जब आपको वो शाम को मिलेगा तो ऐसा टेढ़े सींग की रहेगा और आपकी तरफ ऐसा देखेगा घूर करके, समझ जाना आप। ने कहा ठीक। अब दोनों पहुंचे, दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा संदेह तो था ही, तो दूर से ही। अब देखो जब संदेह हो जाता है तो संभल संभल के जात फिर कदम रखत, तो समझ समल के कि कैसा देख रहे। तो उनने ऐसे गौर से देखा, तो उसने भी गौर से, अरे यार लोमड़ी सही कह रही थी कि वो ऐसे देखेगा और ये ऐसे क्यों कर रहा है सींग। शेर ने देखा तो उसने भी देखा ऐसे टेढ़े करके, बस दोनों जन में झगड़ा हो गया, ना कोई कारण था ना कुछ भी, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति बुरा विचार आया तो उसका मैसेज दूसरे तक आज। तो इस पर बहुत काम हो रहा है साइकोलॉजी में। वो कह रहे हैं विचारों की भी वर्गणाएं होती हैं, जैसे अपन कहते कर्म की वर्गणाएं, ऐसी हमारे विचारों की भी वेव्स होती हैं, वो दूसरे तक चली जाती है। अपन लोग पहले बात नहीं कहते थे कि मैं इसमें गदेली में थोड़ी सी वो हो रही है, स्पंदन हो रहा है और पैर में थोड़ा था सोड़ा लग रहा, कोई याद कर रहा होगा ये क्या है, ये गलत नहीं है, ये सही है, हमारे जितने भी मर्म स्थान है ये फड़कने लगी आंख, भाई कुछ शुभ या अशुभ कोई ना कोई एक होने वाला है, हम नहीं जानते क्या होने वाला, पर मैसेज पहले से आ जाता, ये हमारे विचारों का प्रभाव, हाँ संप्रेषण होता, इसलिए हमें दूसरे के प्रति अच्छे ही विचार रखना चाहिए। हम बुरे विचार रखें और चाहें कि वो हमारे प्रति अच्छे विचार रखे, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? हम किसी के प्रति अच्छे ही विचार रखते रहे और सामने वाला बुरे रखे, कुछ दिन के बाद हमारे मन में भी आने लगेगा कि अरे ये जो है कितने भी, फिर भी पारसनाथ जैसे बनना बहुत कठिन है। एक तरफा लड़ाई 10 भाव तक चली, पारसनाथ भगवान ने कुछ नहीं बोला, हमेशा क्षमा भाव धारण किया और कमठ महाराज उपद्रव ही उपद्रव करत रहे हैं। सो बाद में लेकिन देखो महापुरुष के प्रति उपद्रव करो तो सो अकल्याण नहीं हो है, बाद में भगवान के ऊपर जो जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तब कमठ को भी जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी 10वें भाव में जाकर के है। पर अपन को दूसरे के प्रति अच्छे भाव ही रखना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। उत्पाद व्यय और ध्रुव को उदाहरण सहज समझाइएगा, अरे भाई ये क्या है, ये उंगली है, ये उंगली सीधी है और ये क्या हो गई, सीधी पर्याय का क्या हुआ व्यय और टेढ़ी पर्याय का उत्पन्न हो गई, उंगली तो ज्यों की त्यों है, कि उसमें कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, ज्यों की त्यों है, यही तो कहलाता है। हर वस्तु में उत्पाद पुरानी पर्याय का नष्ट होना, नई पर्याय का उत्पन्न होना, नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता, पुरानी पर्याय का नष्ट होना व्यय कहलाता, और फिर भी वस्तु का रहे आना यह ध्रुव कहलाता है, वर्थ रिवर्थ और परमानेंस जिसको अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं। देव दर्शन के बिना भोजन न करने का नियम हो, और यात्रा करते समय जिस दिन देव दर्शन नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए क्या? अरे अब आपने जब नियम लिया तो फिर क्या करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, बहुत स्पष्ट सी चीज थी। आप क्या सोच रहे थे कि हम कह देंगे कि कर लेना चाहिए? नहीं, पहले हमें नियम लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि कैसे करेंगे। हम पुराने लोगों को देखते थे, वो इतनी लंबी यात्रा ही नहीं करते थे, वो यहां सवेरे 5 बजे बढ़िया से दर्शन वर्शन करके 6 बजे और फिर यात्रा शुरू करेंगे, तो 24 घंटे भी हो जाए दूसरे दिन 10 बजे तक कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे भगवान के दर्शन करेंगे फिर बाद में भोजन करेंगे। आचार्य महाराज वहां से स्तव निधि से और सीधा अजमेर की यात्रा करके गए थे, 2 दिन लगे थे उनको यात्रा में, 2 दिन तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था, ग्रहण ही नहीं किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से मिलने गए थे जब पहली बार जो है ब्रह्मचारी अवस्था में देशभूषण जी महाराज से, ऐसी घटनाएं आती हैं बहुत पुरानी। तो अपने को अगर देव दर्शन के बिना भोजन का नियम लिया आपने कि नहीं करेंगे तो नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी सामर्थ्य नहीं है तो नियम लेने से पहले छूट रख लेना चाहिए कि भाई अन्न का भोजन नहीं करेंगे, या कोई रस का त्याग कर देंगे, या कि हम शांति से बैठ करके पहले जो है 15-20 मिनट माला फेरेंगे फिर बाद में जैसी स्थिति हो, ऐसा सब कुछ जो है पहले से। और अगर आपने नियम ले लिया अच्छा, और देखो घबराना नहीं, एक आध दिन ने खाओ तो मरत थोड़ी है, ज्यादा फर्क नहीं लगता है, बनखों के मरने जाए प्राण निकल जाएंगे। हाँ अबे तक जो है भूखो को नहीं मरो, खाए पिए बहुत ज्यादा पेट भरे मर गए, दुख बहुत ज्यादा खाए। सूतक वाले के लिए तो बाहर से दर्शन करने का विधान है ही कि बाहर से दर्शन कर लेगा, अगर देव दर्शन का नियम है, त्यागी व्रति हो गए घर में ही रह रहा, 7वीं प्रतिमा है उसका तो जो है देव दर्शन का नियम है, क्या करेगा वो, कहते बाहर से झरोके में से आकर के पहले प्रणाम करो, चाहे सूतक लगी हो चाहे कुछ भी लगा हो। अरे देव दर्शन के लिए सूतक कह रहे हैं आप, और बाकी 5 पाप कर भी कि सूतक नहीं लगा, हमें आज हमें जय समझ में आज तक नहीं आई। हाँ भोग विलास की सामग्री को छूटी नहीं 10 दिन तक, अकेले मंदिर छूट गो जी, ऐसा किसने कहा है, विचार करना चाहिए। लेकिन मंदिर का ये है कि आप वहां आओगे तो बार बार लोग, अब अगर जन्म हुआ होगा किसी का तो मंदिर में आए और पहले नंबर देखते ही साधु कहे अरे आपके यहां तो क्या बेटा हुआ है, अब ले भाई चर्चा शुरू हो गई, इसने भैया बाहर ऐसे चुपचाप दर्शन करके, हमने मालवा साइड इंदौर साइड देखा भी 6 बजे से अपने दर्शन अर्शन करके वापस चले जाते, जो उनके सूतक पातक लगी बाहर ऐसे दर्शन के लग, जो उनसे मिले या तो शुभ हुआ होगा तो माने कांग्रेचुलेट करेगा वो बधाई देगा, और अगर कुछ अशुभ हो गया होगा तो शोक व्यक्त करेगा, वही मंदिर में रोन लगो तन कहीं कोई ने पूछी का को का होगा तो अब नहीं रहे, नहीं रहे तो ही मंदिर में ही अभी रोना मर जाए, तो 10-12 दिन तनक शांति हो जाए, घर ही मिल लो जुल लो फिर आना। वहां पर निषेध नहीं किया मंदिर के देव दर्शन का, लेकिन इस तरह मंदिर का वातावरण खराब ना हो जाए इसलिए आप दूर रहो वहां से चुपचाप दर्शन करके, मैंने बाहर से नहीं तो आप जाकर के भीतर की कह रहे महाराज भीतर आने के नहीं, बाहर से ही दर्शन, दर्शन करने का निश्चय। इसलिए तो मानसस्तंभ बनते थे कि मानसस्तंभ में दूर से ही दर्शन कर लिया हमने, हमारा देव दर्शन का नियम भी निप गया और सूतक पातक का नियम भी निप गया, वो भी निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कुछ भी करते रहो। ये चीज
यहाँ पर
नहीं करते,
करते कहां?
पहले ये दरवाजा खुला था यहाँ से, ये बंद हो गया, तो इस वाले दरवाजे से बहुत जल्दी आ सकते थे। अब क्या है थोड़ा सा फिर भीतर, हाँ सीधे आ सकते हैं, पर अभी बनी है सीमा, नहीं तो वो भंग हो जाएगी, तो फिर सब जगह आने लगेंगे ऐसा हो, इसलिए थोड़ा सा निषेध सा कर दिया कि नहीं। हाँ वो पहले क्या है ना, उधर पहले भगवान और फिर मानसस्तंभ, जब यहाँ से गेट था तो पहले मानसस्तंभ फिर भगवान, यहाँ से बैठ करके कर लेते हैं। हाँ उसको तो बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ
बहुत कछु नहीं, बहुत अच्छा रहा दस दिन शांति रही। हाँ आप सुनो सुनो,
शांति से घर पे बैठ जाओ, दर्शन नहीं भाई नहीं होंगे, वो होगा तो ठीक है, चौकी पे बैठ जाओ, पाटा पे बैठ जाओ, चटाई में छा जाओ, पूरब तरफ बैठ करके नवोकार मंत्र करो, पूजा पढ़ो, भाव पूजा करो, वहां भाव पूजा करो, और समय जितना वहां दे यहाँ भी दे लो,
ठीक है,
एकांत जगह बैठ करके एक घंटा दो घंटा का पूजा करो, पूजा की प्रभावना करो, शांति करो, पाठ करो, जो कुछ बने अपने सामायिक करो, सब कुछ एक डेढ़ घंटा वही समय लेंगे,
मतलब
तो आपका वो कार्यक्रम पूरा हो गया।
हाँ मतलब धर्म धर्म ध्यान का समय तो उतना होना चाहिए,
पूरा हो गया। हाँ दर्शन उससे समय हम नहीं कर सकते, दोष लग रहा है दर्शन करने में, नहीं दोष इसी नहीं कर रहे,
हाँ।
वो काम तुम करो जो कर सकते,
ठीक,
अपने घर पर बैठ करके शांति से वो पूजा तो दो घंटा कर सकते हो, हम आपको बतला फिर तुम्हारी माता जी खत्म हो गए, तो पूजन करके फुर्सत है, तो किताब हाथ में थी, लोग आगे किताब दे दो, दे दे तो चलो समझ से थोड़ी आ गई, आए मांग ली हमने, हमने सोची पढ़े मांगे, चलो बैठे स्कूटर पे खत्म हो गए, ठीक गए वहाँ, आपकी अगर तो मैं कोई भोजन करने जाता नहीं देंगे, तेरे होती नहीं, तो 15 दिन तीत हुए, कैसे हुए, तो भाग से कहा कि दरवाजे खुले तो दर्शन दर्शन हो जाए।
हाँ।
खुले मंदिर का सामने दर्शन होते, ऊपर से भी होते, तो हम की जिन्हें वहां करने से ऊपर से कर लो, यहाँ कर लो, तो एक कान पर बैठे किवाड़ बंद करे, तो 2 घंटा पूजन कर, और आंखें दोरे में बैठ गए, तब वो पुजारी निकल के 11 बजे घर चले जाए, तब भोजन कर, एक रस तुम लोगों का काम है, जाने के ऐसे ही फिर रहे, ध्यान से सुनना, ऐसे ही फिर रहे सप्रो नहीं है, पूजा नहीं,
पूजा नहीं करनी पड़ी,
एक दूसरे गांव का नियम था, एक व्यक्ति सुखमंद नहीं था, तो वो रोज अष्टमी चौदश का नियम लिया उन्होंने, अष्टमी चतुर्दशी पूजा करने आएंगे, आज तो एक कोई काणा हो से गाँव गए, कहा तुम कहा करते फिर आते हैं, तुम्हारा नियम है तो सफर खोल करके और तुम बैठ जाओ और बैठ जाओ और अपना स्वाध्याय करो और पूजा करो, कहले आज तुम गुरु हमारे बन गए, कहले वहाँ से आया राजेश है वो राजस्थान वहाँ, तो उसका वो रिश्तेदार हो, तो कहले जिनवाणी तो है, हम जिनवाणी को सहारा है, पर तुम काम तो करो, उस दिन से वो काम करने लगा, अब उसको छटपटी लग गई कि क्या करें, तो उसने उस गांव का सब जायदाद बेची और जाके जबलपुर में पहुँच गए, हम वहाँ से मुनि बन के जब आए तो मंडियो जी मिले पंडित जी और सब थे, कहने लगे हम तो तैयार आदमी, तो वो मेडिकल के पीछे में लो मकान लग रही खेत मंदिर आते जा दो, कहले हम तो जाने वही थी आते ही में आए, तो हम इतना अच्छा हुआ कि आपने ठीक यहाँ स्थान में आ गए और धर्म ध्यान करने लगे, मंदिर ना मिले भगवान ना मिले, ये तो क्रिया अलग है, फिर रोटी नहीं खाने उपवास नहीं करने है? तो अपने धर्म ध्यान तो करना, हम भी सरकार जी से चले बीच में कोटर में गाड़ी खराब हुआ रुकी रही रात भर दिन भर, तो बैठे रहे गाड़ी में उतरे नहीं, तीसरे दिन जबलपुर पहुंचे तो उतरे सपरो खोरो पूजा पाठ करी, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा एक प्रश्न वाला है गड़ा कोटा में, चले महाराज हमारा नियम है और बम्बई में हमारे भाई रहते कैसो करें हम कैसो करियो इतने से टिकट लाई तो जहाँ तक तुम जा सको सागर तक की कर ले वहाँ उतरो वहाँ सब लोग बोलो पूजा पाठ करो पूजन करो फिर चल दो फिर वहाँ से चलो भोपाल तक की टिकट ले लो वहाँ जाओ सब लोग खोलो खाओ पियो और अपने फिर इंदौर तक की ले लो ऐसो कर अरे ऐसे पैसा ज्यादा कितने लगे तो मैं नियम न मत जाओ नियम ले लो ऐसी जगह उतरो का हम शाम को बैठे रात सवेरे पहुँच जाएंगे इतनी टिकट ले लो तुम्हारा नियम कैसे न सर सब लोग खोलो पूजा पाठ करो फिर बैठो रात भरे फिर बम्बई पहुँच जाओ ऐसो कर भी मैं नहीं हूँ इस को काम करो जिन बोलिया में बॉम्बे से चल रहे हैं तीसरे दिन आकर इस सफर को अभी कई सब पहले हम बम्बई से आ रहे हैं अब सफर को रो बिल्कुल को रही है और पूजा पाठ भी करी अब भोजन कर रहे तो बेनियम है या नहीं आगे हमने मिले तो नहीं सर
तो देव दर्शन का जो है हम सोचते हैं कि वो नियम इसी वजह से दिया जाता होगा कि फिर आवागमन बहुत कम हो जाएगा अपने आप फिर व्यक्ति बहुत सतर्क होकर के ही करेगा एक प्रश्न और इनने पूछा है कि योग्यता और श्रद्धा में कौन बड़ा है भाई योग्यता तो सांसारिक चीजों को उपलब्धि को लेकर के भी हो सकती कि आप योग्य हैं संसार में फिट हैं बहुत दुनियादार हैं लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में या मोक्ष मार्ग में जो व्यक्ति अपना अनुराग रखता है उसी का नाम तो श्रद्धा है तो देखा जाए तो योग्यता तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की श्रद्धा महत्वपूर्ण है व्यक्ति ज्ञानवान है व्यक्ति चारित्रवान है सब कुछ है लेकिन अगर उसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है तो उसका वो ज्ञान और आचरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता शुद्धे ज्ञाने सुचि निचरिते सत्यपि त्वय नीचा भक्तिर नोचेत नवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम् शक्योद्घाटम भवति ही कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदर महामोह मुद्रा कवाटम भगवान की भक्ति करते हुए बादीराज महाराज कह रहे कि हे भगवान हम तो ऐसा जानते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है सो रखे रहो आपके पास बहुत पवित्र आचरण है कहते वो भी रखे रहो उससे क्या होने वाला जब तक कि भक्तिर नोचेत अनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम् है जो अनंत सुख को देने वाली भक्ति रूपी कुंजी आपके पास नहीं है तो आपका ज्ञान और आचरण कोई काम का नहीं क्योंकि जो मोह का ताला लगा है मोक्ष के द्वार पर वो तो भक्ति रूपी कुंजी से ही खुलेगा तो वो बहुत आवश्यक है उस तो इसलिए श्रद्धा हमारे यहां पर सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है फिर उसके बाद ज्ञान और आचरण वो सबकी योग्यता भी अच्छा और श्रद्धा के लिए भी योग्यता तो हासिल करनी पड़ेगी ये ध्यान रखना श्रद्धा के लिए योग्यता आवश्यक है ऐसा नहीं समझना कि श्रद्धा के लिए योग्यता आवश्यक नहीं है योग्यता यही है कि आप समर्पित हो सके इतनी इतनी योग्यता तो आपको हासिल करनी पड़ेगी जिससे कि आपके मन में सच्चे देवगुरु शास के प्रति जो है और नहीं तो एक इंद्री जीव को क्या योग्यता है सच्चे देवगुरु शास के प्रति वो क्या श्रद्धा करेगा तो कहते एक इंद्री दो इंद्री की तो चर्चा ही नहीं करो असंगी पंचेंद्री तक के भीतर ऐसी योग्यता नहीं है संगी होवे पंचेंद्री होवे पर्याप्तक होवे और जागृत उपयोग वाला होवे तब वो व्यक्ति सम्यक दर्शन का पात्र है वो इतनी योग्यता तो उसके लिए होनी चाहिए तो श्रद्धा के लिए जो योग्यता आवश्यक है वो योग्यता भी महत्वपूर्ण है और वैसे तो देखा जाए तो श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है अब ये छोटे छोटे प्रश्न हैं अरंत भैया की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं ये पूती दोष कह रहे हैं एक पूती दोष होता है मुनि महाराज जी के दोषों में आहार के दोषों में आता है कि कोई अपवित्र वस्तु दिखाई पड़ जाए तो फिर जो है या मैं उस दिन आहार ग्रहण नहीं करते अब रास्ते से चले जा रहे हैं मृत शरीर दिखाई पड़ गया या कि किसी के शरीर से पीप और खून बहता हुआ बहुत सारा ऐसे लगा हुआ नहीं ऐसा बहता उसमें लिखा कि चार अंगुल धार बह गई हो इतना दिख जाए आहार के लिए जा रहे अंजलि लेकर के तो फिर अंतराय मान लेंगे ये पूती दोष कहलाता है क्या देव मरकर पांचों स्थावर में उत्पन्न हो सकता है कहते तो हैं कि देव जो है मिथ्या दृष्टि हो गए तो लेकिन उसकी भी सीमा है कहां तक के देव स्थावर में उत्पन्न हो सकते हैं सभी देव स्थावर में उत्पन्न नहीं होते संगी पंचेंद्री होते हैं देव वहां से मर करके पर सामान्य रूप से व्यंतर इत्यादि जो जो भवनवासी हैं व्यंतर हैं ज्योतिषी हैं भाई मानिक देवों का तो ऐसा नहीं आता हाँ तो विमानवासी जो जो हैं ये तुम्हारे भवनवासी व्यंतर इत्यादि, उनमें परिवर्तन किसे कहते हैं? अपने यहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इनको परिवर्तन कहते हैं। इनके माध्यम से होने वाला परिवर्तन, पांच प्रकार का परिवर्तन है, उसे ही परिवर्तन कहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग मंदिर के, क्या लिखा है ये, दखने पर ऊपर से तीन बार पानी डालते हैं, क्या है ये? पूछो, किसने पूछा ये, सही सही बताओ पहले, क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, बच्चों की राइटिंग है, मंदिर के दिखने पर सिर पर, वो शुद्धि के लिए है, एक शुद्धि मंत्र से है शुद्धि होती, एक शुद्धि होती है नहाने धोने पर, लेकिन नहा धो के भी मंदिर में आए हैं और लग रहा है कि उतनी शुद्धि नहीं रही, तो फिर जो है वो अपन कहते छींटे डाल लो, तीन बार ऐसे पानी डाल लिया मन वचन काय से, भाई हमने शुद्धि कर ली। पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो इन सब देखो क्रियाओं में ज्यादा मत उलझो। अपन लोग जो है क्रियाओं में बहुत उलझ गए हैं, भावों की तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। आचार्य श्री कहते कि हम लोग जो है आज के समय में क्रिया तो चाह चौथे काल जैसी और भाव है छठे काल जैसे। अरे हम कहते भाव रखो चौथे काल जैसे, अब क्रिया तो पंचम काल की जैसी है, सुबह से ही होगी। अब कहां से हम क्षीर समुद्र में पानी ले जाए, हमारे कुआं को है खराब जोन, अब वही से भगवान का करेंगे हमसे जितनी गुंजाइश होगी। तो क्रियाओं को जो है ज्यादा महत्व नहीं दो भैया, पर ऐसा भी नहीं है कि क्रियाओं को अनदेखा कर दो, ऐसा भी नहीं करना कि महाराज जी ने तो कहा कि कोई क्रिया नहीं, सो कल से जो है चाहे जैसे कपड़े पहन के आ जाओ मंदिर में, ऐसा नहीं। शुद्धि हम रखेंगे, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, भावों की शुद्धि महत्वपूर्ण है। शरीर की शुद्धि तो हमने कर ही ली, बिना शरीर की शुद्धि के भाव की शुद्धि भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि कोई कहे कि बाह्य शुद्धि की क्या आवश्यकता है हमारी बात सुन करके, तो कहते नहीं वो भी आवश्यक है, एक कांच के गिलास में अच्छो बढ़िया केसर डालो दूध भरो है और ऊपर से कौन गंदगी लगा दे कांच पे ओके बेके पियो। अपन कहेंगे अरे कैसे पियो, कहते भीतर का तो बहुत अच्छा, भीतर तो अच्छा केसर का दूध है, बाहर लगू कचरा थोड़ा मेलो सो, नहीं उसमें पिया ही नहीं जाएगा। बाह्य शुद्धि भी आवश्यक, लेकिन बाह्य शुद्धि का उतना महत्व नहीं जितना कि तस्मात क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, भावों से शून्य हम क्रिया करेंगे तो वो फलित नहीं होगी। वहां भावना देखो कि वो डालने के पीछे, बिना बिना भावना के मंदिर जाने से क्या लाभ है। अरे भैया और लाभ हो चाहे न हो, पावन भई पर्याय मेरी मैं भयो पूरण धनी, ये हाथ जो है पता नहीं किसका आहित करते, ये पैर पता नहीं कहां कहां जा करके और अपना आहित कर लेते, कम से कम पैरों से चल के मंदिर तक आ गया, हाथों से इस थाली में से उठा के उस थाली में, भाव बिल्कुल नहीं लग रहा है, भाव तो कहूं और है लेकिन क्रिया हो रही है, मन से नहीं आश्रय अच्छा हो रहा पर शरीर से और वाणी से तो शुभ का आश्रय ही होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए और पता नहीं किस दिन धोखे से बाई चांस किस दिन सही सही में दर्शन हो जाए, भावना जागृत हो जाए। देखो जो व्यक्ति निरंतर मंदिर आता होगा उसी के मन में जो है कभी कभार दर्शन होंगे, और जो आते ही नहीं है, कोई कहे कि देखो हम तो फेल ही नहीं हुए, तो उससे पूछा कि तुम फेल नहीं हुए जाते बताओ पहले कि पढ़त कहां हो, कहले हम पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ते नहीं है तो का फेल और का पास है जी, बताओ आप। जो फेल हो गया था एमए में उसको तो वो चिढ़ा रहा कि तुम फेल हो गए, तो उनसे कुछ पूछा कि भैया तुम कहो नहीं मैं फेल, कहले हम कहो नहीं मैं फेल, तो कहले तुमने पढ़ी है कि नहीं, कहले पढ़ी तो हम पढ़े नहीं, आप पहले से ही फेल, मंदिर गए ही नहीं है तो आपके भाव लगने नहीं लगने का। जो मंदिर जावे और उसके भाव नहीं लगे तब भी उसको जाना चाहिए निरंतर। लोग कहते कि माला फेरते मन नहीं लगता, हम कहते फेरो, उसी से कर्म की निद्रा होगी और एक दिन मन अवश्य लगेगा। मंदिर किसे कहेंगे, मंदिर को अपन लोग मंदिर कहने लगे हैं, वास्तव में जिनालय है, है? जिनेंद्र भगवान का आलय, अर्थात जिनेंद्र भगवान जहां पर बैठते हैं। हमें भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए, ये नहीं पूछते कि हमें रोज खाना क्यों खाना चाहिए, सांस क्यों लेना चाहिए, पानी क्यों पीना चाहिए। अरे भाई ये चीजें जैसे जीवन के लिए आवश्यक हैं, हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, इसी तरह अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए ये सब जो ध्यान इत्यादि की क्रियाएं हैं ये सब आवश्यक हैं। आप आचार्य महाराज से कब और कैसे मिले, आपकी जब आचार्य महाराज से बात हुई तब आपको कैसा लगा? अरे अब आपको क्या बताएं, जब हम कुंडलपुर में आचार्य श्री आए थे सन 76 में, तब हमको सागर में ये मालूम पड़ा कि बहुत छोटे छोटे बहुत सुंदर महाराज हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो कन्नड़ में बोलते, उनने समझा कि अंग्रेजी में करते, तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि इंग्लिश में बात करते तो जरूर जाएंगे। तो एक दिन बस जा रही थी तो अपन भी बैठ गया उसमें, जाकर के वहां देखा कुंडलपुर में आचार्य श्री के पहले दर्शन किए, तो वो प्रथम जो दर्शन था वो आज सोचता हूं कि आखिर क्या हुआ था। फिर उसके बाद ही हमने पूजा और ये सब अपने आप, किसी ने कहा नहीं था, फिर अपने आप पूजा करना मंदिर में, मंदिर के भगवान जीवित मालूम पड़ने लगे कि हाँ ऐसे ही तो होंगे, वीतरागी हैं और बहुत एक तो सुंदर उनका शरीर, और पीछे से लाइट आ रही थी, धूप आ रही थी तो बहुत सुंदर दिख रहे थे, मुझे दूर से ही दर्शन हुए थे। फिर तो हर हफ्ते जाने का नियम कर लिया था, सैटरडे की शाम को जाना और संडे पूरा वहां रहना, और संडे के नाइट में वापस आ गए। छह दिन जो है कॉलेज इसलिए जाते थे कि अच्छे से पढ़ लो छह दिन, फिर सातवें दिन ब्रेक, छुट्टी रहेगी, फिर महाराज के पास जाएंगे, तो पूरा इंटरेस्ट उसका था। और फिर आचार्य श्री तो किसी से नहीं बोलते थे, हम तो और लोगों के पीछे पीछे बैठ जाते थे कि किसी से बोलेंगे तो जरा सुन लेंगे अपन भी, इतना ही बहुत था। फिर धीरे धीरे उनने देखा कि ये तो हमेशा आता है, और तो फिर कभी कभार जो है पूछ लेते थे, कोई मैगजीन वगैरह लेके गए, उसमें सन्मत संदेश है, उसमें कुछ आया तो वो ले जाते थे टैग लगा करके, तो आचार्य श्री दूर से देख करके क्यों क्या बात है, तो ये लाए थे, बस इतना रख दिया कदम। फिर धीरे धीरे और तीन साल तक जो है, मुझे आपको तो इतने आसानी से मिल जाते हैं हमसे बात करने, हम जानते हैं कि कैसे पापड़ बेलने पड़े। तीन साल तक जो है, हाँ ऐसे सामान्य नहीं था, उतने दूर वहां बैठ जाते थे, यहाँ आचार्य श्री बैठे, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपन क्या, अपनी क्या औकात है कि अपन क्या बात करेंगे महाराज से, अपन क्या पढ़े लिखे हैं इस धर्म के मामले में, भले ही आप कितने बड़े पढ़ाई पढ़ रहे हो लेकिन महाराज के सामने तो जाकर के क्या कहते हैं, चरणन में दिठि दीनी है, तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, करी पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय करी बैठ्यो, चरणन में दिठि दीने, वहां जाके बैठ जाते थे। तीन साल तक वो देखते रहे कि ये कभी भी हमने अपनी तरफ से चेष्टा नहीं